और भाई लोग, शायद मैं कुछ टेप रिकॉर्डर को यहाँ पर देखता हूँ और अवश्य ही वे निश्चित रूप से रिकॉर्ड कर लेंगे। जब भी आप जानना चाहें कि पवित्र आत्मा ने आपसे क्या कहा, तो इन भाइयों से मिलिए जिनके पास ये टेप रिकॉर्डर हैं। वे उनको फिर से चला सकते हैं। आप अपने मामले को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं और ध्यान दें और देखें, यदि वैसा ठीक ठीक नहीं होता है जैसा कि इसे कहा गया। आप देखना, जब आप उस बात को कहते हुए सुनते हैं, यहोवा यो कहता है एक निश्चित बात को, या यह बात इस तरह से है, या आप बस उस बात को जांचे और यह देखें कि यदि वो बात सही है या नहीं। समझे, यह हमेशा इसी तरह से होता है। अब एक छोटी सी पृष्ठभूमि के लिए, और मैं एक प्रकार से आज रात खुश हूँ कि यहाँ पर बस हम में से कुछ ही लोग हैं। हम बस घर के लोग हैं, क्या हम नहीं हैं? हम में से कोई भी अजनबी नहीं है, हम नहीं। मैं बस अपने केंटकी व्याकरण का उपयोग कर सकता हूँ और अब मुझे ऐसा घर जैसा अनुभव हो रहा है, क्योंकि हम बस, और अब मैं केंटकी के विषय में बस यूँ ही नहीं कह रहा हूँ। क्या यहाँ केंटकी से कोई है? क्या कोई यहाँ पर केंटकी से है? आप अपने हाथ को ऊपर उठाएं, कहें मुझे ठीक घर जैसा अनुभव होना चाहिए, क्या मुझे नहीं होना चाहिए? यह बहुत ही अच्छी बात है। मेरी माँ एक बोर्डिंग हाउस चलाती थी और मैं एक दिन ये जानने के लिए वहाँ गया। वहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक झुंड ठहरा हुआ था और एक बड़ी और लंबी मेज वहाँ पर रखी हुई थी, और मैंने कहा, आप में से कितने यहाँ पर केंटकी से हैं? आप खड़े हो जाएं। सब खड़े हो गए और मैं उस रात कलीसिया में वापस गया, अपनी कलीसिया में, और मैंने कहा, आप में से कितने लोग यहाँ पर केंटकी से हैं? सभी खड़े हो गए। सो मैंने कहा, अच्छा, यह बहुत अच्छी बात है, मिशनरियों ने एक अच्छा कार्य किया है। सो हम उस बात के लिए धन्यवादित हैं। अब रोमियो की पुस्तक में उसका 11वां अध्याय और उसका 28वां पद, अब वचन के पढ़े जाने को ध्यान से सुने। वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे प्रिय हैं, बाप दादाओं के कारण प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलावट बिना पश्चाताप के हैं। हम प्रार्थना करें, प्रभु आज हमारी इस रात अब सहायता करें, जबकि हम इसके पास बड़े आदर भाव से आते हैं, अपने संपूर्ण हृदय से सत्य निष्ठा में केवल आपकी महिमा के लिए ये बातें बोली जाती हैं। और प्रभु मेरी सहायता करें और मेरे मन में केवल बस उन्हीं बातों को डालें जिसे बोला जाना चाहिए और कितना बोला जाना चाहिए। जब आपका समय आए तो मुझे रोक दें। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हर एक हृदय उन बातों को उन लोगों के हित के लिए ग्रहण करेगा जो कि सभा में बीमार है और आवश्यकता में है, क्योंकि मैं इस बात को यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। अब जबकि हम संख्या में कम हैं, मैं इस विषय के समीप जाना चाहता हूं और यह यत्न करूंगा कि आपको बहुत देर तक रोके ना रखूं। मैं अपनी घड़ी को यहां पर रखूंगा और मैं अब अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे समय पर छोड़ दूं, ताकि आप कल रात वापस आ सकें। अब प्रार्थना में रहें। मैं नहीं सोचता कि लड़के ने अभी तक कार्ड दिए होंगे। मैंने उससे कभी नहीं पूछा कि क्या उसने, और यदि उन्होंने नहीं दिया है या उन्होंने दिया है या नहीं दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी हो, हमारे पास यहाँ पर कार्ड हैं। यदि हमें कुछ लोगों को बुलाने की आवश्यकता पड़ती है, सो यदि यह नहीं दिया है, क्योंकि हम बस यह देखेंगे कि पवित्र आत्मा क्या कहता है। अब यदि आप ध्यान से सुनेंगे, अब यह शायद कि यहाँ पर हम में से कुछ ही लोग हैं, इस बात को कहने के लिए एक बहुत अच्छा समय है, क्योंकि यह मेरे अपने व्यक्तिगत अस्तित्व के साथ व्यवहार करता है। और यही कारण था कि मैंने इस वचन को आज रात पढ़ा, जिससे कि आप यह समझने पाएं कि दान और बुलावटें कुछ ऐसी चीजें नहीं हैं जो कि आपको आपकी अच्छाई के कारण प्राप्त हो सकें। पौलुस ने यहाँ बोलते हुए कहा, सुसमाचार के अनुसार उसे भी हमारे कारण यहूदियों को अंधा कर दिया गया और परमेश्वर से दूर कर दिया गया, लेकिन ठीक उसके पहले का पद कहता है, सारा इसराइल बचाया जाएगा, सारा इसराइल बचाया जाएगा। चुने जाने के अनुसार परमेश्वर पिता ने उनसे प्रेम किया और उनको अंधा किया, ताकि हम अन्य जातियों को पश्चाताप करने का स्थान मिल सके, कि अब्राहम के द्वारा उसके बीज उसके वचन के अनुसार सारे संसार को आशीषित कर सके। देखा कि परमेश्वर की प्रधानता किस प्रकार से है, उसके वचन को बस होना ही है, वह और कुछ हो ही नहीं सकता। और अब हम परमेश्वर ने हमें चुना है, उसने यहूदी को चुना है और उसने यह सभी चीजें परमेश्वर के पूर्व ज्ञान में है। जब उसने उनके विषय में बोला था कि वे क्या होंगे, वह इस बात को पहले से जानता था। अब परमेश्वर को परमेश्वर होने के लिए आरंभ में उसको अंत को जानना था, अन्यथा वो अनंत परमेश्वर नहीं हो सकता। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई नाश होना चाहिए, निश्चय ही नहीं, वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। लेकिन आरंभ में जब दिनों का आरंभ हुआ था उस संसार का, परमेश्वर इस बात को बस ठीक ठीक जानता था कि कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। वो यह नहीं चाहता था कि लोग नाश हो जाएं, यह उसकी इच्छा नहीं है कि कोई भी नाश हो जाए, लेकिन उसकी इच्छा यह है कि सभी को बचा ले। लेकिन वो आरंभ से जानता था कि कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। यही कारण है कि वो यह पहले से कह सकता था, यह बात घटित होगी, वो बात घटित होगी, या यह ऐसा होगा, वो व्यक्ति उस प्रकार से होगा। समझे, वो उस बात को पहले से जान सकता था क्योंकि वह अनंत है। यदि आप यह जानते हैं कि इस बात का क्या अर्थ है, तो बस कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो कि वह नहीं जानता हो। समझे, वो जानता है तो समय से पहले कुछ भी नहीं होता है और बाद में अब कुछ भी समय नहीं है। समझे, वह अब भी सब बातों को जानता है, हर एक चीज उसके मन में है। और तब फिर पौलुस ने रोमियो के 8वें और 9वें अध्याय में कहा, फिर वह क्यों अभी भी गलती को निकालता है? इसलिए हम इसे देखते हैं। लेकिन परमेश्वर, जैसा कि सुसमाचार का प्रचार करना, किसी ने कहा, भाई ब्रैनम, क्या आप इसे विश्वास करते हैं? मैंने कहा, देखिए, कहा, आप अवश्य ही कैल्विनवादी होंगे। मैंने कहा, मैं तब तक कैल्विनवादी हूँ जब तक कैल्विनवाद बाइबल में है। अब पेड़ पर एक डाली है, वो कैल्विनवाद है, लेकिन वहाँ पेड़ पर और भी डालियाँ हैं। एक पेड़ पर एक से अधिक डाली होती है। वो बस इसे अनंत सुरक्षा के अंदर ले जाना चाहता था। और कुछ देर के बाद आप विश्वव्यापीता में चले जाते हैं और फिर आप कहीं आगे जाकर गिर पड़ते हैं, उसका कोई अंत ही नहीं होता। लेकिन जब आप कैल्विनवाद से होकर जाते हैं तो वापस आकर और आर्मियनवाद पर आरंभ करते हैं। समझे, वहाँ पेड़ पर एक और डाली है और पेड़ पर एक और डाली है, बस बढ़ती ही रहती है, सारी चीज मिलकर एक पेड़ को बनाती है। तो मैं कैल्विनवाद पर विश्वास करता हूँ जब तक कि ये वचन के साथ में पाई जाती है। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जगत की बुनियाद से पहले जानता था। उसने अपनी कलीसिया को मसीह में चुन लिया और मसीह को जगत की बुनियाद डालने से पहले घात किया। वचन ऐसा कहता है, वो परमेश्वर का मेमना था जिसे जगत की बुनियाद डालने से पहले घात किया गया था। समझे, और यीशु ने कहा कि वह हमें जगत की बुनियाद डालने से पहले जानता था। पौलुस ने ऐसा कहा, वो हमें पहले से जानता था और उसने हमें यीशु मसीह के लेपारकपन पुत्र होने के लिए पहले से ठहराया भी, इससे पहले कि संसार की कभी रचना होती। वही परमेश्वर है, यही हमारा पिता है। समझे, सो आप चिंता न करें, पहिए बस ठीक प्रकार से घूम रहे हैं, हर एक चीज बस समय से होती जा रही है। केवल एक ही बात है, वो यह है कि आप पहिए के घुमाव में जुड़ जाएं, और यही इसका सबसे अच्छा भाग है। जब आप घुमाव में जुड़ जाते हैं तब आप जानते हैं कैसे काम करना है। अब ध्यान दें, दान और बुलावट बिना पश्चाताप के होते हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं वचन के आधार पर प्रभु में अपनी बुलावट को रख सकता हूँ। और मुझे विश्वास है कि आज रात मैं ऐसे दोस्तों के साथ हूँ जो इसे अवश्य समझेंगे और इस बात को व्यक्तिगत नहीं समझेंगे, लेकिन जिससे कि आपको एक समझ प्राप्त हो सके और बस ये जानने पाए कि प्रभु ने जो कहा है वो उसे करेगा, और किसी चीज को आगे बढ़ता हुआ पाते हैं और तब उस चीज में उसका अनुकरण करें। अब आरंभ में पहली बात जो कि मुझे कभी याद आती है, ये एक दर्शन है। पहली चीज जिसे मैं अपने मन में याद कर सकता हूँ, यह एक दर्शन है जो कि प्रभु ने मुझे दिया है। और यह बात कई वर्ष पहले हुई थी। मैं एक छोटा सा लड़का था और मेरे हाथ में एक पत्थर था। अब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे याद है जब मैंने एक लंबी पोशाक पहनी हुई थी। मैं यह नहीं जानता हूँ कि क्या आप और आप सभी बहुत पहले की बात है इस बात को याद कर सकें, जब लंबी पोशाकें पहना करते थे। यहाँ कितने लोगों को याद है जब बच्चे पहनते थे, जी हाँ, लंबे कपड़े। अच्छा, मैं याद कर सकता हूँ उस छोटी सी पुरानी झोपड़ी में जहाँ पर हम रहा करते थे। मैं जमीन पर रेंग रहा था और यह कोई तो था, मैं यह नहीं जानता कि यह कौन था जो अंदर आया। और माँ ने मेरे कपड़े में एक छोटा सा नीला रिबन बुना था और मैं बस मुश्किल से चल पाता था। लेकिन तब मैं रेंग कर चल रहा था और मैंने अपनी उंगली उनके पैरों पर बर्फ में डाल दी और उसके पैरों पर की बर्फ को मैं खा रहा था और वो आग जलाने के स्थान के पास खड़ा हुआ था, गर्म हो रहा था। मुझे याद है कि मेरी माँ ने इस बात के लिए मुझे डांटा था। और फिर अगली बात जो मुझे याद है, लगभग 2 वर्ष बाद की रही होगी, मेरे पास एक छोटा सा पत्थर था और उस समय मेरी उम्र लगभग 3 वर्ष रही होगी और मेरा छोटा भाई भी लगभग 2 वर्ष का ही रहा होगा। और सो हम पीछे के आंगन में थे जहाँ पर पुराना लकड़ी के टुकड़ों को रखने का आंगन था, जहाँ पर वे लकड़ी को लाकर और उस लकड़ी को काटा करते थे। आप में से कितनों को वे दिन याद हैं जब आप अपने पीछे के आंगन में लकड़ी को खाड़ कर लाया करते थे और उसे काटा करते थे। आज भी मैंने टाई क्यों पहन रखी है, मैं ठीक घर पर हूँ। फिर जब वे वहाँ बाहर पुराने आंगन में जहाँ पर लकड़ी के टुकड़े थे, वहाँ पर एक छोटी सी शाखा निकल कर आई थी जो कि सोते में से निकल कर आ रही थी। वहाँ झरने के पास एक पुराना सूखे कद्दू का डुबाने वाला बर्तन था जहाँ हम अपना पानी डुबा कर लेते और इसे पुरानी बाल्टी में डालते थे। ये बाल्टी पुराने देवदार की बनी हुई थी, फिर उसे लेकर आते थे। मुझे याद है कि अंतिम बार मैंने अपनी छोटी सी बूढ़ी दादी को देखा था, इससे पहले कि मृत्यु हो, वह 110 वर्ष की थी और जब उसकी मृत्यु हुई मैंने उसको अपने हाथों में उठा लिया और उसके मृत्यु होने के ठीक पहले मैंने उसको इस प्रकार से पकड़ा। उसने अपने हाथों को मेरे चारों ओर डाल दिया और कहा, परमेश्वर तुम्हारे प्राण को आशीष दे प्रिय, अब और हमेशा के लिए। जब वो मरी और मैं नहीं सोचता कि उसके जीवन में उस स्त्री के पास कभी भी एक जोड़ी अपने खुद के जूते भी रहे होंगे। और मुझे याद है जब उन्हें देखने जाया करता था और यहाँ तक कि जब मैं एक युवा पुरुष था मैं उन्हें मिलने जाया करता था। हर सुबह वह नंगे पैर उठ जाया करती थी और बर्फ में से होते हुए उस सोते के पास जाया करती थी, एक बाल्टी पानी लेकर वापस आया करती थी, उसके पैर उसी में होते थे। तो यह चीज आपको हानि नहीं पहुंचाती है, वो 110 वर्षों तक जीवित रही। सो जी हाँ श्रीमान, वह बहुत ही मजबूत भी थी। तो फिर मुझे याद है कि वह मुझे मेरे पिता के उन कंचों के बारे में बताने जा रही थी जिनसे वह बचपन में खेला करते थे। और वो बेचारी बूढ़ी स्त्री, मैंने सोचा वह कैसे उस अटारी में ऊपर जाएगी। एक छोटी सी 2 कमरों की झोपड़ी थी और जिसमें ऊपर एक अटारी थी और उन्होंने 2 छोटे पेड़ों को काटा था और ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी बनाई थी। खैर मैंने कहा, खैर अब उसने कहा, अब रात के भोजन के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम्हें तुम्हारे पापा के कंचों को दिखाऊंगी। और मैंने कहा ठीक है। सो वह मुझे उन्हें ऊपर रखे हुए बक्से में से दिखाने जा रही थी जहां पर उसने अपने सामानों को रखा हुआ था जैसे कि बूढ़े लोग रखा करते हैं। और मैंने सोचा आखिर वह बेचारी बूढ़ी स्त्री उस सीढ़ी पर से कैसे ऊपर चढ़ेगी। तो मैं वहां पर जाकर और मैंने कहा, दादी माँ, मैंने कहा अब आप रुकना प्रिय, मैं वहां ऊपर जाऊंगा और आपकी सहायता करूंगा। उसने कहा तुम एक तरफ खड़े रहो। वह उस सीढ़ी पर से गिलहरी की तरह ऊपर चली गई। उसने कहा अच्छा आ जाओ। और मैंने कहा ठीक है दादी माँ। मैंने सोचा ओह मेरे परमेश्वर, यदि मैं बस इसी प्रकार से होता, यदि मुझमें उतनी शक्ति होती जितनी कि उसके 110 वर्ष के होने के बावजूद उसमें है। अब तब मुझे याद है कि मैं इस छोटे से पुराने झरने पर था और मेरे हाथ में एक पत्थर था और मैं उसको इस प्रकार से जोर से कीचड़ में फेंक रहा था, अपने छोटे भाई को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं कितना ताकतवर हूँ। और वहाँ पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी और वो चींची कर रही थी, इधर उधर उड़ रही थी, एक छोटी सी रॉबिन चिड़िया या ऐसे ही कोई तो चिड़िया थी। और छोटी सी रॉबिन, मुझे लगा कि वह मुझसे बात कर रही है और मैं मुड़ा और सुनने लगा और चिड़िया उड़ गई और एक आवाज ने कहा, तुम अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग एक शहर के पास बिताने जा रहे हो जिसका नाम न्यू अल्बानी है। यह उस स्थान से 3 मील दूर है जहां पर मैं पला बड़ा था। मैं गया, लगभग 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर गया। वहां जाने का कभी विचार नहीं था। न्यू अल्बानी, जीवन भर वे चीजें कैसे। अब देखिए, मेरे लोग धार्मिक लोग नहीं थे, मेरे पिता और माता कलीसिया नहीं जाते थे, इससे पहले वे कैथोलिक थे। मेरा छोटा भतीजा यहीं कहीं पर आज रात बैठा हुआ है। मैं सोचता हूँ, मैं नहीं जानता, वो एक सैनिक है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। वो स्वयं कैथोलिक है, अभी भी कैथोलिक है। और पिछली शाम को जब वो यहाँ पर था और उसने उन परमेश्वर की बातों को सुना, वो ठीक यहाँ मंच पर खड़ा हुआ था, तो उसने यहाँ पर खड़े होकर कहा और उसने कहा, बिल अंकल, वह बहुत समय से विदेश में रहा था। उसने कहा, जब मैंने उस बात को देखा, कहा ये बात कैथोलिक कलीसिया में घटित नहीं होती है। उसने कहा, वह मैं विश्वास करता हूँ अंकल बिल, आप सही हैं, उसने कहा। और सो मैंने कहा, प्रिय, यह मैं नहीं हूँ जो कि सही है, यह तो वो है जो कि सही है, समझे, वो है जो कि सही है। और सो उसने कहा वह, मैंने कहा, अब मैं तुमसे कुछ भी न करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मेलविन, लेकिन बस अपने पूरे हृदय से प्रभु यीशु मसीह की सेवा करो। तुम जहाँ चाहो वहाँ जाओ, लेकिन अपने हृदय में निश्चय कर लो कि यीशु मसीह ने नए सिरे से जन्म लिया है, देखो तुम्हारे हृदय में। इसके बाद तुम जिस किसी कलीसिया में जाना चाहो जा सकते हो। अब मुझसे पहले के लोग कैथोलिक थे, मेरे पिता आयरिश थे और मेरी माँ भी आयरिश थी। वहाँ एकमात्र अंतर आयरिश लहू में है। मेरी दादी एक चेरोकी इंडियन थी, मेरी माँ बस लगभग आधी नस्ल की है। और सो फिर मैं, मेरे लिए या मेरा, हमारी जो पीढ़ी थी चीन के बाद में वह धूमिल हो गई, लेकिन पूर्ण रूप से आयरिश होने में केवल यही पर वह कड़ी टूटी थी। उनका नाम हार्वे और ब्रेनम था। और फिर उसके पीछे लियोन्स लोग थे जो कि अब भी आयरिश हैं। और फिर वे सभी कैथोलिक थे, लेकिन मेरे लिए बचपन में हमें कोई धार्मिक प्रशिक्षण या शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन वे दान, वे दर्शन, मैं ठीक तब से लेकर दर्शनों को देखता आया हूँ जैसा कि मैं अभी देखता हूँ, यह सही है, क्योंकि दान और बुलावट बिना पश्चाताप के हैं। यह परमेश्वर का पूर्व ज्ञान है। परमेश्वर कुछ तो कर रहा होता है। जीवन के सभी समयों में से होते हुए मैं इसके विषय में कुछ कहने से डरता था। आपने मेरी कहानी को एक छोटी किताब यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक साहे में पढ़ी होगी। मैं ये सोचता हूँ कि यह बात कुछ किताबों में है, इन दूसरी किताबों में क्या यह सही है जीन? क्या यह बात इसमें है, उस नियमित किताब, उस किताब में जो हमारे पास अभी है? क्या यह मेरी जीवन कथा में है? मैं सोचता हूँ कि उसी में है। फिर जब हमने, क्या यह बेकार बात नहीं है, मेरी अपनी किताबें, और मैंने उन्हें खुद कभी भी नहीं पढ़ा है, परंतु कोई तो और उनको लिखता है, इसलिए तब यह कुछ ऐसा है जिसे उन्होंने सभा में लिया है। मैं उस बात से होकर गुजरा हूँ, सो मैं हमेशा ही किसी और बात के होने के लिए देख रहा हूँ। सो तब वे अच्छी हैं, मैंने अब उनके कुछ भागों को यहाँ वहाँ से पढ़ा है, बस जैसे ही मुझको मौका मिलता है। और अब जो भी है, जब मैं एक छोटा लड़का था, आप जानते हैं कि कैसे उस दर्शन ने मुझसे बोला था, मैं लगभग 7 वर्ष का था, और कहा, तुम शराब न पीना या न धूम्रपान करना या अपने शरीर को न ही किसी भी प्रकार से दूषित करना, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे लिए एक काम होगा। और आपने यह सुना है जिसे उस किताब में बताया गया है, तो यह सही है। हर समय मेरे साथ ऐसा घटित होता रहा है। जब मैं एक सेवक बना, अच्छा, तब यह सचमुच हर समय घटित होना आरंभ हुआ। और मैंने एक रात को हमारे प्रभु यीशु को देखा। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं ये बात पवित्र आत्मा की अनुमति से कह रहा हूँ। प्रभु का दूत जो आता है, ये प्रभु यीशु नहीं है। उसी दर्शन में वह उसकी तरह से नहीं दिखता है, क्योंकि जो दर्शन मैंने प्रभु यीशु का देखा था, उसमें वह एक छोटा सा मनुष्य था। वो नहीं, मैं बाहर खेत में था, अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रहा था, और मैं वापस अंदर आ गया और मैं बिस्तर पर चला गया, और उस रात मैंने उसकी ओर देखा और मैंने कहा, हे परमेश्वर, उन्हें बचा लीजिए। मेरी माँ का पहले से उद्धार हो चुका था और मैंने उन्हें बपतिस्मा दिया था। तब मैंने सोचा, ओह, मेरे पिता बहुत शराब पीते हैं, और मैंने सोचा, काश मैं उन्हें प्रभु यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार कर पाता। मैं बाहर गया, आगे के कमरे में द्वार के पास मैं एक छोटे से पुराने पलंग पर लेट गया, और किसी ने मुझसे कहा, खड़े हो जाओ, और मैं खड़ा हुआ, चलने लगा, और मेरे पीछे जो खेत था उसमें चला गया। यह खेत पुरानी सूखी घास के पौधों का था, और वहाँ पर मुझसे 10 फुट से ज्यादा दूरी भी नहीं थी, एक मनुष्य खड़ा हुआ था। उसने सफेद वस्त्र पहने हुए थे। वह एक छोटा सा व्यक्ति था। वह उसके हाथ को इस तरह से बांधे हुए था। उसकी दाढ़ी थी जो कि छोटी थी। उसके बाल उसके कंधे तक थे, और वो मुझसे दूर एक ओर देख रहा था। इस प्रकार से वो एक शांतिपूर्ण दिखने वाली आकृति, लेकिन मैं इसे समझ न सका कि कैसे उसका पैर बस एक के ठीक पीछे दूसरा था, और हवा चल रही थी, उसका वस्त्र हिल रहा था, पौधे हिल रहे थे। मैंने सोचा, अब एक मिनट रुकना। मैंने अपने आप को काटा। मैंने कहा, अब मैं सोया हुआ नहीं हूँ, और मैंने तोड़ा उस पौधे का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा। आप जानते हैं, मैंने उससे एक दांत को खोदने वाला टुकड़ा जैसा बनाया। मैंने उसे अपने मुंह में रखा। मैंने घर की ओर पीछे देखा। मैंने कहा, नहीं, मैं वहाँ पर पिता के लिए प्रार्थना कर रहा था, और किसी ने मुझसे कहा कि बाहर आ जाओ, और यहाँ पर एक मनुष्य खड़ा हुआ है। मैंने सोचा, वह प्रभु यीशु की तरह दिखाई देता है। मैंने सोचा, मैं सोचता हूँ कि क्या यह वही है? वो बस ठीक सीधे उस तरफ देख रहा था जहाँ पर अभी हमारा घर स्थापित था। सो मैं ये देखने के लिए इस ओर पीछे मुड़ा कि क्या मैं उसको देख पाता हूँ, और मैं इस प्रकार से उसके चेहरे के एक ओर देख सकता था, लेकिन वह मुझे इस ओर पूरा घूमना था ताकि मैं उसे देख सकूं। और मैंने कहा, इस बात ने उसको नहीं हिलाया, और मैंने सोचा, मैं सोचता हूं कि मैं उसे पुकारूं, और मैंने कहा, यीशु। और जब उसने ऐसा किया, उसने इस प्रकार से देखा, यही सब कुछ मुझे याद है। उसने बस अपने हाथों को फैला लिया। संसार में ऐसा कोई भी चित्रकार नहीं है जो कि उसकी तस्वीर को कभी बना सकता है, उसके चेहरे के गुणों को बना सकता है। सबसे अच्छी तस्वीर जो कि मैंने कभी देखी है, वो हॉफमैन के द्वारा बनाया गया चित्र है, जिसका नाम है मसीह का सिर 33 वर्ष में। मैं उस चित्र को अपने सारे साहित्य पर और हर एक चीजों पर उपयोग में लाता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बस उसी की तरह दिखाई देता है, और सो तब या बहुत ही नजदीक, जितना नजदीक हो सकता है, वो एक मनुष्य की तरह सा दिखाई देता है। यदि वह बोल दे तो संसार अंत पर आ जाएगा, और फिर भी उसके अंदर बहुत अधिक दया और प्रेम था, इतना तक कि आप, मैं वहीं पर स्थिर खड़ा रहा, और दिन निकलने पर मैंने अपने आप को दिन के उजाले पर पाया कि मेरी ढीली शर्ट आंसुओं से भीग गई थी। जब मैं अपने आपे में आया, तब मैं उस सूखी घास के पौधे के खेत में से होता हुआ वापस आ गया। मैंने ये बात अपने एक सेवक मित्र को बताई। उसने कहा, बिल्ली, यह बात तुमको पागल कर देगी। उसने कहा, यह शैतान है, और कहा, ऐसी कोई बात लेकर तुम मूर्ख मत बनो। मैं उस समय एक बैप्टिस्ट सेवक था। अच्छा, मैं अपने एक और पुराने मित्र के पास गया। मैं नीचे बैठा और उसको उस बात के विषय में बताया। मैंने कहा, भाई, तुम उस विषय में क्या सोचते हो? उसने कहा, अच्छा बिली, मैं तुमको बताता हूँ। उसने कहा, मैं ये विश्वास करता हूँ कि यदि तुम अपने जीवन को बनाए रखने की कोशिश करते हो, तो बस उसी बात को प्रचार करो जो कि बाइबल में है, परमेश्वर का अनुग्रह और इत्यादि बातें। मैं किसी काल्पनिक इसी प्रकार की कुछ बातों के पीछे नहीं जाता हूँ। मैंने कहा, श्रीमान, मेरा मतलब किसी काल्पनिक बात के पीछे जाने से नहीं है। मैंने कहा, मैं केवल एक ही बात का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह क्या है। उसने कहा, बिल्ली, वर्षों पहले उनके पास कलीसिया में ऐसी बातें हुआ करती थी, लेकिन कहा, जब प्रेरितों के काम समाप्त हो गए तो ये बातें उनके साथ ही समाप्त हो गई, और कहा, अब केवल एक ही बात है जो कि हमारे पास में है, वो यह है कि कोई भी इस प्रकार की चीजों को यदि देखता है, कहा, तो यह आत्मावादी और दुष्ट आत्माएं होती हैं। मैंने कहा, हे भाई मैकिनी, क्या तुम्हारे कहने का यही अर्थ है? उसने कहा, हाँ श्रीमान। मैंने कहा, हे परमेश्वर, आप मेरे ऊपर दया करें। मैंने कहा, मैं, ओह भाई मैकिनी, क्या आप मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे कि परमेश्वर ऐसी बात को मेरे साथ कभी भी होने न दे? आप जानते हैं कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, और मैं इन बातों में गलत होना नहीं चाहता हूँ। मैंने कहा, आप मेरे साथ प्रार्थना करें। उसने कहा, भाई बिली, मैं ऐसा करूँगा। और फिर हमने उनके सेवक आवास पर ठीक वहीं पर प्रार्थना की। मैंने अनेक प्रचारकों से पूछा, वही बात निकल कर आई। तब मैं उनसे वह बात पूछने से डरने लगा, क्योंकि वे यह सोचने लगते कि मैं एक शैतान हूँ। इसलिए मैं उस प्रकार से नहीं होना चाहता था। मैं अपने हृदय में जानता था कि कुछ तो घटित हुआ है। अब बस ऐसा ही है, वहाँ मेरे हृदय में कुछ तो था जो घटित हुआ था, और मैं कभी भी उस प्रकार से नहीं होना चाहता था। सो कुछ वर्षों के बाद मैंने एक दिन फर्स्ट बैप्टिस्ट कलीसिया में सुना, जहां पर मैं उस समय एक सदस्य था। मैंने किसी को कहते हुए सुना, कहें तो आपको वहां पर जाकर और कल रात को उन पवित्र शोर शराबा करने वालों को सुनना चाहिए था। और मैंने सोचा, पवित्र शोर शराबा करने वाले? और मैंने अपने एक मित्र वॉल्ट जॉनसन से, जो कि निचले स्वर का गायक है, और मैंने कहा, भाई वॉल्ट, ये क्या बात थी? उसने कहा, ये इन पेंटिकॉस्टल लोगों का एक झुंड है। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, पेंटिकॉस्टल लोग? कहा, बिल्ली, यदि तुम कभी इसे देखोगे, कहा, वे फर्श पर इस तरह से लुढ़कते हैं और ऊपर और नीचे उछल कूद करते हैं, और कहा, उन्होंने ये कहा कि उनको किसी प्रकार की अन्य भाषा में बड़बड़ाना होता है, या तो वे बचाए नहीं गए हैं। और मैंने कहा, ऐसा कहाँ पर होता है? ओह, कहा, वहाँ एक छोटे से पुराने तंबू के अंदर की सभा में, जो कि लुइस विले के दूसरी ओर है। कहा, निश्चय ही वे अश्वेत लोग हैं। और मैंने कहा, और उसने कहा, वहाँ पर बहुत सारे श्वेत लोग भी हैं। मैंने कहा, क्या उन्होंने भी वैसा ही किया था? कहा, हाँ हाँ, उन्होंने भी वैसा ही किया था। मैंने कहा, यह हास्यजनक बात है कि लोग उस प्रकार की चीजों में अपने आप को उलझा देते हैं। मैंने कहा, अच्छा, मैं सोचता हूँ कि हमारे पास वे बातें होना ही है। रविवार की सुबह मैं इसे कभी नहीं भुला सकूंगा, वह बदहजमी की वजह से सूखे संतरे के छिलके का टुकड़ा खा रहा था और मैं बस इसे वैसे ही देख सकता हूँ जैसे ये कल था। और मैंने सोचा बड़बड़ाना और ऊपर और नीचे कूदना उनके पास आगे किस प्रकार का धर्म होगा, और इसलिए मैं आगे चला गया। उस बात के बाद मैं एक बूढ़े मनुष्य से मिला जो कि शायद अभी कलीसिया में हो या वो यहाँ कलीसिया में था, जिसका नाम जॉन रियान है। और मैं उससे एक स्थान पर मिला। वो एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी लंबी दाढ़ी और लंबे बाल थे और शायद वो यहाँ पर हो सकता है। मैंने सोचा कि वो यहाँ पर बेंटन हार्बर से है, हाउस ऑफ डेविड नाम की कलीसिया से, और उनके पास लुइस विले में एक स्थान था। मैं उन लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहा था और वे उसको भविष्यवक्ताओं का स्कूल कहते हैं। सो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर जाकर और देखूंगा कि यह क्या है। खैर, मैंने किसी को फर्श पर लुढ़कते हुए नहीं देखा, लेकिन उनके पास कुछ विचित्र शिक्षाएं थी। और यही वो स्थान है जहाँ पर मैं इस बूढ़े व्यक्ति से मिला। उसने मुझे निमंत्रण दिया कि मैं उसके स्थान पर आऊं। मैं छुट्टियों पर वहां ऊपर गया और मैं वहां पर एक दिन था, और मैं उसके घर वापस गया और वो चला गया था, और वो इंडियाना पॉलिस में कहीं तो चला गया था। कहा, प्रभु ने उसको सेवकाई के लिए बुलाया, उसकी पत्नी ने कहा। मैंने कहा, आपका अर्थ है कि आप उस मनुष्य को बस इसी प्रकार से जाने देती हैं? उसने कहा, ओह, वह परमेश्वर का सेवक है। मैंने सुना कि उस बेचारी बूढ़ी स्त्री की कुछ सप्ताह पहले मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी उसको समर्पित थी। ओह, इसी प्रकार की पत्नी होनी चाहिए। यह सही है? सही है या गलत? कुछ भी है, वो सही है। मैंने कहा, अच्छा, मैं जानता था कि वे अब वह भाई रियान, क्या आप यहाँ पर हैं? वो यहाँ नहीं है। लड़कों, वह उस दिन यहाँ पर थे, क्या वो नहीं थे? अच्छा, वे बस उसके सहारे जीवन को व्यतीत करते हैं, जो कुछ भी उनको मिल जाता है, और घर में उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये सही है। और मैंने तालाब से कुछ मछलियाँ पकड़ी थी या मिशिगन की झील में से पकड़ी थी, और मैं वहाँ वापस आया और मैं उसी स्थान पर वापस आ गया। और मछली को पकाने के लिए घर में उनके पास चर्बी या तेल नहीं था जिससे कि वे मछली को पका सकें। और मैंने कहा, वो घर में आपको कुछ भी चीज दिए बिना छोड़कर चले गए हैं? कहा, ओह, लेकिन वे परमेश्वर के सेवक हैं भाई बिल। कहा वो, और मैंने सोचा, अच्छा, आपके बूढ़े हृदय को आशीष दे भाई, मैं ठीक आपके साथ में खड़ा रहूंगा। ये सही बात है, आप अपने पति के लिए बहुत सोचती हैं। मैं आपके साथ उस बात में जुड़ने के लिए और आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हूँ। यह सही बात है, हमें आज इस प्रकार की और भी स्त्रियों की आवश्यकता है, और उस प्रकार के और भी पुरुषों की जो इस प्रकार से उनकी पत्नियों के विषय में सोचते हैं। यह सही है, इससे अमेरिका और भी बेहतर हो जाएगा यदि पति और पत्नी इस प्रकार से एक साथ जुड़ जाएं, चाहे वे गलत हो या सही हो, उनके साथ में बने रहें, तब इतने सारे तलाक नहीं होंगे। सो हम वहाँ पर गए, तब मैं आगे चला गया और वापस घर जाते हुए यह एक विचित्र बात थी कि मैं मिशावाका में से होते हुए आया और मैंने अब छोटी पुरानी कारों को देखा जो कि सड़कों पर खड़ी थी, जिस पर उन पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे जिन पर केवल यीशु लिखा हुआ था। मैंने सोचा, इसका क्या, केवल यीशु, यह अवश्य ही धार्मिक होना चाहिए। और मैं यहाँ पर चला गया और यहाँ साइकिलों पर केवल यीशु लिखा हुआ था। कैडिलिक मॉडल टी फोर्ड की कारें और हर एक प्रकार की कारें थी, उन पर केवल यीशु लिखा हुआ था। मैंने सोचा, खैर, मैं सोचता हूँ कि ये है क्या। सो मैं उनके पीछे पीछे गया। यह पता चला कि यह एक धार्मिक सभा थी। वहाँ पर 1500 से लेकर 2000 लोग थे, और मैंने सुना वहाँ सभी चिल्ला रहे थे और ऊपर नीचे कूद रहे थे और इसी प्रकार से कर रहे थे। मैंने सोचा, यही है वो जहाँ पर मैं देखता हूँ कि पवित्र शोर शराबा करने वाले लोग हैं। तो मेरे पास मेरी पुरानी फोर्ड कार थी, आप जानते हैं, जिसके लिए मैं ये दावा करता था कि वह एक घंटे में 30 मील चलती है, चलने में 15 इस तरफ और 15 ऊपर नीचे इस तरफ। तो मैंने उसको एक तरफ लगाया। जब मैंने गाड़ी खड़ी करने के स्थान को पा लिया और वहाँ सड़क पर चल कर गया, चारों ओर देखा और हर कोई खड़ा था जो खड़ा हो सकता था। मुझे उनके सिरों के ऊपर से होकर देखना पड़ा, और वे चिल्ला रहे थे और कूद रहे थे और गिर रहे थे और ऐसे ही करना जारी था। मैंने सोचा, ओह, ये क्या ही लोग हैं। लेकिन जितनी देर तक मैं वहाँ पर खड़ा रहा, उतना ही मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने सोचा, ये बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। मैंने सोचा, उन लोगों के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं लगती, वे पागल नहीं हैं। मैंने उनमें से कुछ लोगों के साथ बातचीत की थी तो वे अच्छे लोग थे। सो मैंने कहा, अच्छा, अब यह वही सभा है जिसमें कि मैं उस रात गया और पूरी रात रुका था और अगले दिन मैं वहाँ अंदर गया और आपने मुझे इस बात को मेरी जीवन कथा में कहते हुए सुना होगा। मैं मंच पर 150 लोगों के साथ में था या 200 सेवक थे और हो सकता है कि ज्यादा हो, और वे हर एक से ये चाहते थे कि अपने हाथ को ऊपर उठाकर और ये बोले कि वे कहाँ से आए हैं। और मैंने कहा सुसमाचार प्रचारक विलियम ब्रैनम जेफरसन विले से। मैं बैठ गया बैप्टिस्ट, तब मैं बैठ गया। हर एक जन ये बता रहा था कि वह कहाँ से आया है। सो अगली सुबह जब मैं वहाँ अंदर गया, उस रात को मैं सारी रात मैदान में सोया था और अपनी पैंट को फोर्ड कार की दो सीटों के बीच में दबा कर रखा था, आपको पता होगा, और मैं एक हल्के कपड़े की बनी हुई पैंट और एक छोटी सी टी शर्ट थी, आप जानते होंगे। सो अगली सुबह मैं सभा में गया, मैंने छोटी टी शर्ट पहन रखी थी। मैं गया, मेरे पास $3 से ज्यादा पैसे नहीं थे और मुझे घर जाने के लिए पर्याप्त पेट्रोल चाहिए था, और फिर मैंने अपने लिए कुछ लपेटी हुई रोटी को लिया, एक प्रकार की पहले हुआ करती थी आप जानते हैं, लेकिन मेरे लिए ठीक था। और मैं एक पानी के पंप के पास गया, अपने लिए एक गिलास पानी लिया आप जानते हैं, और वे काफी अच्छे थे तो मैंने उनको थोड़ा सा भिगो लिया और नाश्ता किया। अब मैं उनके साथ खा सकता था, अब वे दिन में दो बार खाते थे, लेकिन मैं प्रेमदान में कुछ भी न डाल सका, सो मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था। सो फिर मैं उस सुबह अंदर गया, उन्होंने कहा मुझे बस इस बात का ये वाला भाग बताना है, और सो वहाँ उस सुबह को अंदर गया और उन्होंने कहा हम विलियम ब्रैनम को खोज रहे हैं, जो कि एक युवा प्रचारक है जो मंच पर पिछली रात आया था, जो एक बैप्टिस्ट है। कहा हम चाहते हैं कि वो इस सुबह संदेश को लेकर आए। मैंने इसे देखा कि उन लोगों का झुंड मेरी जो खिंचाई करेगा। मैं एक बैप्टिस्ट था, सो मैं बस एक प्रकार से अपनी सीट में नीचे चुपचाप से बैठ गया। मैंने हल्के कपड़े की पैंट और टी शर्ट पहन रखी थी आप जानते हैं, और हम याजकीय कपड़े पहनते, सो और मैं इस प्रकार से सीट पर बैठा हुआ था। तो उसने दो या तीन बार पूछा, और मैं एक अश्वेत भाई के पास बैठा हुआ था, और जिस कारण से उन्होंने यह कन्वेंशन को पूर्व में आयोजित किया था, क्योंकि पश्चिम में उस वक्त अलगाव हो रहा था, इसलिए वे इसे पश्चिम में नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने सोचा कि इस केवल इशू के विषय में क्या बात है, और मैंने सोचा जब तक यह इशू है तो इसमें कोई बात नहीं है, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे वह ये किस तरह से है, बस जब तक कि ये वो है। सो मैं वहाँ पर थोड़ी देर तक बैठा रहा और उन्हें देखता रहा, और तो उन्होंने दो या तीन बार और पुकारा, और इस अश्वेत भाई ने मेरी ओर देखा, उसने कहा क्या आप उसको जानते हो। मैं वहाँ पर निर्णय का समय आ गया था, मैं उस व्यक्ति से झूठ नहीं बोल सकता था, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था। मैंने कहा देखिए भाई, हाँ मैं उसे जानता हूँ। उसने कहा अच्छा, तुम जाकर उसको बुला कर लाओ। मैंने कहा अच्छा, मैं आपको बताता हूँ भाई। मैंने कहा मैं ही वो हूँ, लेकिन आप देखो। मैंने कहा देखो, मैंने ये हल्के कपड़े की पैंट पहनी है, वहाँ ऊपर जाओ। और मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ पर ऊपर नहीं जा सकता हूँ। मैंने कहा इस पैंट के साथ में इस प्रकार से और इस छोटी सी टी शर्ट पहने हुए हूँ। कहा उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे कपड़े पहनते हो। और मैंने कहा अच्छा देखो, तुम उसका उल्लेख नहीं करना, सुना। मैंने कहा देखो, मैंने ये हल्के कपड़े की पैंट पहनी हुई है, मैं वहाँ पर ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। कहा क्या कोई भी जानता है कि विलियम ब्रैनम कहाँ पर है। उसने कहा यहाँ है वो, यहाँ है वो। ओ मेरे परमेश्वर, मेरा चेहरा लाल हो गया आप जानते हैं, और मैंने कोई टाई पहनी हुई नहीं थी आप जानते हैं, और इस छोटी सी पुरानी टी शर्ट को पहने हुए था आप जानते हैं, और इस प्रकार से उसकी छोटी बाहें थी, और मैं अपने जलते हुए कानों के साथ में वहाँ ऊपर चलकर गया। मैं कभी भी माइक के आसपास नहीं गया था, और सो मैंने वहाँ ऊपर प्रचार करना आरंभ किया, और मैंने एक विषय को लिया, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। धनी मनुष्य ने अपनी आंखें ऊपर अधोलोक की ओर उठाई, और फिर वह रो पड़ा। मैंने बहुत बार छोटी तीन चीजों पर इस तरह से प्रचार किया, आकर एक मनुष्य को देखो तो इसे विश्वास करता है, या फिर वो रोया, और मैं कहता रहा वहाँ कोई फूल नहीं है, और फिर वो रोया, कोई प्रार्थना सभाएं नहीं है, फिर वो रोया, वहाँ कोई बच्चे नहीं है, फिर वो रोया, कोई गीत नहीं है, और फिर वो रोया, फिर मैं रोया। सो जब सब कुछ समाप्त हो गया, क्यों? ओह मेरे परमेश्वर, वे बस वे सभी मेरे चारों ओर थे, वे यह चाह रहे थे कि मैं और उनके लिए सभाएं करूं, और मैंने सोचा कहे तो कि शायद मैं एक पवित्र शोर शराबा करने वाला हूं, समझे। सो मैंने सोचा शायद, समझे, वे बहुत ही अच्छे लोग थे, और मैं बाहर वहाँ पर चलकर गया। एक मनुष्य जिसने घुड़सवार चरवाहे की जूतों को पहना था और एक बड़ी घुड़सवार चरवाहे की टोपी पहन रखी थी, मैंने कहा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं फलाना और फलाना टेक्सास से आया प्राचीन हूँ। मैंने सोचा, अच्छा, वो ऐसा दिखा। एक और व्यक्ति उन छोटी सी ऊपर से बहुत ही ढीली पैंट को पहने हुए चलकर आया। आप जानते हैं, वे उन पैंटों को पहने हुए गोल्फ खेला करते हैं, और उनमें से एक छोटा सा जर्सी का स्वेटर पहने हुए आया। उसने कहा, मैं फ्लोरिडा से आदरणीय फलाना और फलाना हूँ, क्या आप आकर? मैंने सोचा, ठीक घर जैसा महसूस कर रहा हूँ लड़के, यहाँ मैं इन हल्के कपड़े की पैंट और टी शर्ट के साथ, ये बस अच्छे हैं। सो आपने उन बातों को मेरी जीवन कथा में सुना है, तो मैं यहाँ पर रुकूंगा और आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो कि मैंने आपको पहले कभी नहीं बताई है। पहली बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं उस बात को छोड़ने जा रहा था, मैंने अपने जीवन में इस बात को कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा है। यदि आप मुझसे वादा करें कि आप मुझसे प्रेम करेंगे और मेरे इसे कहने के बाद मुझसे उतना ही प्रेम करने की कोशिश करेंगे जितना मैं करता हूँ, इससे पहले कि मैं इसे कहूँ, अपने हाथ को ऊपर उठाएं, तो ठीक है, यह आपकी प्रतिज्ञा है, मैं इसे पूरा करने के लिए आपसे वादा करता हूँ। उस रात उस सभा में बैठे हुए जब वे अपने गीतों को गाते हैं, वे अपने हाथों से ताली बजाते हैं और वे गाते, मैं उस छोटे से गीत को गाते, मैं जानता हूँ कि यह लहू था, मैं जानता हूँ कि यह लहू था, और वे गलियारे में आगे और पीछे दौड़ते और हर एक चीज करते और बस चिल्लाते और प्रभु की स्तुति कर रहे थे। मैंने सोचा, ये बात मुझे बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है। मैंने आरंभ और भी हर समय प्रेरितों के कार्य 2:4, प्रेरितों के कार्य 2:38, प्रेरितों के कार्य 10:49 का हवाला देते थे। यह सब मैंने सोचा, यदि कहा जाए तो यह वचन है, मैंने बस इस प्रकार से इसे पहले कभी भी नहीं देखा था। लेकिन ओह, मेरा हृदय जल रहा था, मैंने सोचा यह अद्भुत है। मैं उनसे पहली बार मिला, तब मैंने सोचा कि वे पवित्र शोर शराबा करने वालों का झुंड है, और मैंने सोचा, ओह मेरे परमेश्वर, अब वो एक दूतों का झुंड है। देखो, मैंने अपने मन को तुरंत ही बदल दिया। सो अगली सुबह जब प्रभु ने मुझे इन सभाओं को करने का एक बड़ा अवसर दिया था, मैंने सोचा, ओह मेरे परमेश्वर, मैं इन लोगों के झुंड के साथ हो जाऊंगा, यह अवश्य ही उसी प्रकार का होना है जिसे वे चिल्लाने वाले मेथोडिस्ट बुलाया करते थे। मैं बस थोड़ा सा और आगे गया, मैंने सोचा शायद ये यही है। सो मैंने सोचा, अच्छा, मैं निश्चय ही ये पसंद करता हूँ। ओह, उनके विषय में कुछ तो है जो मैं पसंद करता हूँ, वे नम्र और मधुर हैं। तो एक चीज जो मैं नहीं समझ पाया वह थी उनका अन्य भाषाओं में बोलना, वो बात मुझे समझ नहीं आई। और मैं वहाँ एक व्यक्ति था, मान लो वो यहाँ पर बैठा हुआ है और एक यहाँ पर बैठा हुआ है, और वे लोग झुंड के अगुवे थे। यह वाला खड़ा होता है और अन्य जुबान में बोलता है, यह एक उसका अनुवाद करता है और सभाओं के विषय में और इत्यादि को बोलता है। मैंने सोचा, ओह मेरे परमेश्वर, क्या बात है, मुझे उस बात को समझना होगा। सो फिर वे ऐसा अदल बदल कर करते इस एक पर उतरता और फिर वापस उस एक पर उतरता, और हर एक अन्य जुबान में बोल रहा था और अनुवाद कर रहा था। बाकी की कलीसिया भी बोल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि इन दो व्यक्तियों की तरह से अनुवाद आ रहा हो। अब मैंने देखा कि वे दोनों एक साथ नजदीक बैठे हुए थे। मैंने सोचा, ओह परमेश्वर, वे अवश्य ही दूत होना चाहिए। सो वहाँ पर पीछे बैठे हुए वह जो कुछ भी था, आप जानते हैं, जो मैं समझ नहीं सकता था, ये मेरे ऊपर प्रकट होता था, और उन चीजों को जानने का मेरे पास एक तरीका है। यदि प्रभु मुझसे चाहता है कि इसे जानूं, आपको पता है, और मैं नहीं, यही कारण है कि मैं ये कहता हूँ कि मैं इस बात को नहीं बताता हूँ, सार्वजनिक रूप से कभी नहीं। यदि मैं वास्तव में कुछ भी जानना चाहता हूँ, आम तौर पर प्रभु मुझे उन बातों के विषय में बताता है, इसलिए यह दान को दिया गया है, आप समझे। सो आप बस लोगों के सामने उस बात को नहीं डाल सकते हैं, यह सुअरों के आगे अपने मोतियों को डालने के समान होता है। यह एक पवित्र बात है, पवित्र चीज है, और आप उसे नहीं करना चाहते हैं, तो परमेश्वर मुझे जिम्मेदार ठहराएगा। जैसा कि भाइयों और इत्यादि लोगों से बातचीत करना, मैं एक भाई के विषय में कुछ बुरी चीज को पता लगाने की कोशिश नहीं करूंगा। एक बार मैं मेज पर एक व्यक्ति के साथ में बैठा हुआ था, उसने अपने हाथों को मेरे चारों ओर डालकर कहा, ओ भाई ब्रैनम, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और मैं कुछ तो बढ़ता हुआ महसूस करता रहा कि कुछ चल रहा था। मैंने उसकी ओर देखा, उसने मुझे वह बात न बताई होती, मैं ये जानता था कि उसने इसे नहीं किया, देखा, क्योंकि ये वहाँ था, वो पूरी तरह से एक ढोंगी था, तो वही वो एक व्यक्ति था, देखो, और ठीक वहाँ पर उसने अपने हाथ मेरे चारों ओर डाले हुए था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, और मैं चला गया। मैं यह नहीं जानना चाहता था, बल्कि मैं उसे बस वैसे ही जानना चाहता हूँ जिस तरह से मैं उसे जानता हूँ, अपने भाई के रूप में, और इसे इसी तरह चलने दें, बाकी का काम परमेश्वर को करने दें, देखा। और मैं नहीं चाहता, मैं उन बातों को जानना नहीं चाहता हूँ। और बहुत सी बार ये बातें ये इस कलीसिया में नहीं होती हैं। मैं कमरे में बैठा रहूंगा, एक रेस्टोरेंट में बैठा रहूंगा और पवित्र आत्मा मुझे उन चीजों को बताएगा जो होने जा रही है। लोग जो कि ठीक यहाँ पर हैं, वे जानते हैं कि यह सत्य है। मैं अपने घर पर बैठकर और मैं कहूँगा अब सावधान रहो, कुछ समय के बाद एक कार आने वाली है, वह फलाना फलाना व्यक्ति होगा, उन्हें अंदर ले जाना क्योंकि प्रभु ने कहा है कि वे यहाँ पर होंगे। जब हम सड़क पर जाएंगे वहाँ पर फलाना फलाना बात घटित होगी, वहाँ पर उस चौराहे पर ध्यान दें क्योंकि तुम्हारी लगभग टक्कर होने जा रही है, और बस यह देखें कि यदि उस प्रकार से होता है कि नहीं। समझे, हर बार सिद्ध रूप से ऐसा होता है। सो आप अपने आप को बहुत अधिक उस बात में नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह परमेश्वर का एक दान है, लेकिन आपको यह ध्यान देना होगा कि आप इसके साथ क्या करते हैं। परमेश्वर आपको जिम्मेदार ठहराएगा। मूसा को देखें, मूसा परमेश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति था। क्या आप यह विश्वास करते हैं? पहले से ठहराया गया, पहले से नियुक्त किया गया और एक भविष्यवक्ता बनाया गया था, और परमेश्वर ने उसे वहाँ पर भेजा, कहा जाकर चट्टान से बोल। इसके बाद इसे प्रहार किया गया था, कहा जाकर चट्टान से बोल और वो अपने जल को लेकर आएगी। लेकिन मूसा क्रोधित था, वहाँ पर भाग कर गया और चट्टान पर मारा, जल नहीं आया। उसने उसे फिर से मारा, कहा तुम विद्रोहियों, क्या हमें तुम्हारे लिए इस चट्टान से जल लाना होगा? आपने देखा कि परमेश्वर ने क्या किया, जल आया, लेकिन कहा मूसा तू यहाँ ऊपर आ। यही इसका अंत था। समझे, आपको उन चीजों के ऊपर ध्यान देना होता है। सो आप उन दिव्य दानों के साथ क्या करते हैं? बस एक प्रचारक की तरह, एक अच्छे प्रभावशाली प्रचारक की तरह, और वो बाहर जाकर और बस प्रेम दानों और पैसों को लेने के लिए प्रचार करते हैं। परमेश्वर उसको उस बात के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। यह सही है, आपको ध्यान देना है कि आप उन दिव्य दानों के साथ में क्या करते हैं। और या तो कोई बड़ी प्रतिष्ठा पाने की कोशिश करते हैं, या किसी कलीसिया के लिए एक बड़ा नाम पाने की कोशिश करते हैं, या अपने लिए एक बड़ा नाम पाने की कोशिश करते हैं। इससे बेहतर तो मैं दो या तीन रात की सभाएं करना पसंद करूंगा और कहीं और जाकर परिश्रम करूंगा और नम्र बना रहूंगा और दीन बना रहूंगा। और आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। जी हाँ श्रीमान, हमेशा अपने स्थान पर बने रहें जहाँ पर परमेश्वर अपने हाथ आप पर रख सके। याद रहे, यह अब अंदर का जीवन है। सो इस दिन मैंने सोचा, अच्छा मैं चलकर वहाँ जाऊँगा, और मैं बस उन लोगों के विषय में बस इतना अधिक सतर्क हूँ। मैंने सोचा मैं उन लोगों के विषय में पता लगाऊंगा, और जब सभाएं समाप्त हो गई तो बाहर आंगन में मैं उनके लिए देखता रहा। मैंने इधर उधर देखा, मुझे उनमें से एक मिला। मैंने कहा आप कैसे हैं श्रीमान? उसने कहा आप कैसे हैं? कहा क्या आप ही वह युवा प्रचारक हैं जिसने आज सुबह प्रचार किया था? मैंने कहा मैं तब 23 वर्ष का था। मैंने कहा हाँ श्रीमान। और उसने कहा आपका क्या नाम है? मैंने कहा ब्रैनम। और मैंने कहा आपका? और उसने मुझे अपना नाम बताया, और मैंने सोचा अच्छा अब यदि मैं बस उसकी आत्मा से संपर्क कर सकता हूँ, और फिर भी यह नहीं जानते हुए कि यह क्या कर रहा था। और मैंने कहा अच्छा कहिए श्रीमान। मैंने कहा आप लोगों के पास यहाँ कुछ तो है जो कि मेरे पास नहीं है। उसने कहा जब से तुमने विश्वास किया तो क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया? मैंने कहा खैर मैं एक बैप्टिस्ट हूँ। उसने कहा लेकिन जब से तुमने विश्वास किया तो क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया? और मैंने कहा अच्छा भाई आपका क्या मतलब है? मैंने कहा मुझे वो नहीं मिला है जो आप सभी के पास है, मैं ये जानता हूँ। मैंने कहा क्योंकि आपको कुछ ऐसी चीज मिली है जो कि शक्तिशाली प्रतीत होती है। और सो कहा क्या तुमने कभी अन्य भाषाओं में बोला है? और मैंने कहा नहीं श्रीमान। कहा मैं तुम्हें ये जल्दी से बता देना चाहता हूँ कि तुमने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है। और मैंने कहा अच्छा यदि पवित्र आत्मा को पाने के लिए यही सब चाहिए तो मैंने यह नहीं पाया है। और सो उसने कहा अच्छा यदि तुमने अन्य जुबान में बात नहीं की है तो तुमने उसे नहीं पाया है। और उस बातचीत को उस प्रकार से जारी रखते हुए मैंने कहा अच्छा मैं उसे कहाँ पर पा सकता हूँ? कहा तुम वहाँ पर उस कमरे में जाओ और पवित्र आत्मा के लिए मांगो। और आप जानते हैं मैं उसको देखता रहा, वो यह नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं जानता था कि उसके पास एक विचित्र सी अनुभूति थी, क्योंकि वो जब वो मेरी ओर देख रहा था उसकी आँखें थोड़ी सी कांच के समान होने लगी थी, और वह लेकिन वह वास्तव में एक मसीही था। वो पूरी तरह से साफ साफ 100% मसीही व्यक्ति था। यह सही है। अच्छा मैंने सोचा परमेश्वर की स्तुति हो, यहाँ है ये, मुझे मुझे कहीं तो वेदी पर जाने की आवश्यकता है। मैं बाहर गया, चारों ओर देखा, मैंने सोचा मैं दूसरे व्यक्ति को ढूंढूंगा। और जब मैंने उसे पा लिया और उससे बात करना शुरू किया, मैंने कहा श्रीमान आप कैसे हैं? उसने कहा बताएं आप किस कलीसिया से संबंध रखते हो? उसने कहा वे मुझे बता रहे थे कि आप एक बैप्टिस्ट हैं। मैंने कहा हाँ। और उसने कहा आपने अभी तक पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, क्या आपने पाया है? मैंने कहा खैर मैं नहीं जानता। कहा क्या आपने कभी अन्य जुबान में बोला है? मैंने कहा नहीं श्रीमान। कहा आपने उसे नहीं पाया है? और मैंने कहा अच्छा मैं जानता हूँ कि वह नहीं पाया है, जो आप सभी ने पाया है, मैं ये जानता हूँ। और मैंने कहा लेकिन मेरे भाई मैं वास्तव में उसे पाना चाहता हूँ। उसने कहा अच्छा वहाँ पर तालाब तैयार है। मैंने कहा मेरा बपतिस्मा हो चुका है, लेकिन मैंने कहा मैंने वो नहीं पाया है जो आप सभी ने पाया है। मैंने कहा आपके पास कुछ तो है जिसको कि मैं वास्तव में पाना चाहता हूँ। और उसने कहा अच्छा ये ठीक है, मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, आप देखो। और यदि मैं जब मैंने अंत में उसकी आत्मा को पकड़ लिया, अब यह दूसरा व्यक्ति था। यदि मैंने कभी किसी गिरे हुए ढोंगी से बात की है तो वहाँ वो उनमें से एक था। वो रह रहा था, उसकी पत्नी एक अश्वेत स्त्री थी, वह एक सुनहरे बालों वाली स्त्री के साथ रह रहा था और उससे उसके दो बच्चे थे। शराब पीना, गाली देना, शराब खानों की ओर भागना और हर एक चीज करता, और फिर भी वो वहाँ पर था और अन्य जुबान में बोल रहा था और भविष्यवाणी कर रहा था। तब मैंने कहा प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं घर चला गया, यह सही है। मैंने कहा मैं बस जाकर, मैं उस बात को समझ नहीं पाया, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे धन्य पवित्र आत्मा गिर रहा है और उस ढोंगी पर गिर रहा है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, बस इतना ही। तब इस लंबे समय के दौरान मैं अध्ययन कर रहा था और रो रहा था, ऐसा सोचा यदि मैं उनके साथ में बाहर जाऊं तो शायद मैं ये पता लगा लूंगा कि ये सब क्या है। यहाँ पर एक है एक सच्चा मसीही और दूसरा एक वास्तविक ढोंगी। तब मैंने सोचा इसके विषय में क्या, ओह मैंने कहा परमेश्वर हो सकता है कि मेरे साथ कुछ तो गलत है। और मैंने कहा एक रूढ़िवादी होने पर यह इसे देखना होगा कि यह बात बाइबल में है, उसे होना चाहिए। मेरे लिए हर एक चीज जो कार्य करती है वो बाइबल से ही आनी है, अन्यथा वो सही नहीं है, उसे यहीं पर से आना चाहिए। इसे बाइबल में साबित किया जा सकता है, सिर्फ एक स्थान से नहीं बल्कि बाइबल में से होते हुए आना है। मुझे इसे विश्वास करना है, इसे मेल खाना ही है और हर एक वचन के साथ जुड़ना है, अन्यथा मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। और फिर क्योंकि पौलुस ने कहा यदि स्वर्ग से कोई दूत भी आकर किसी और सुसमाचार का प्रचार करे तो वह शापित हो, इसलिए मैं बाइबल का विश्वास करता हूँ। और मैंने कहा मैं उस प्रकार की कोई भी चीज बाइबल में नहीं देख सकता हूँ। दो वर्ष के बाद जब मैंने अपनी पत्नी और सब कुछ खो दिया था, मैं ऊपर ग्रीन की मील पर था जो कि मेरे प्रार्थना करने का छोटा सा पुराना स्थान है। मैं वहाँ पीछे अपनी गुफा में वहाँ पर दो या तीन दिन तक था, ये दो दिन हो गए थे। मैं थोड़ी सांस लेने के लिए बाहर चला गया, हवा में सांस लेने, और जब मैं वहाँ बाहर चलकर गया तो मेरी बाइबल उस पेड़ के लठे के छोर पर रखी हुई थी जहाँ आप अंदर आते हैं। एक पुराना पेड़ नीचे गिरा हुआ था, उसमें से डालियाँ फैल गई थी। अब आप इस प्रकार से उसमें डालियाँ इस तरह ऊपर की ओर उठी हुई थी और पेड़ नीचे गिरा हुआ था। और बस उस पेड़ के लट्ठे के दोनों ओर पैर करके बैठ गया और रात के समय वहाँ बाहर बैठकर इस प्रकार से ऊपर आकाश की ओर देखने लगा। मेरा हाथ इस प्रकार से रखा हुआ था और कभी कभी मैं इस प्रकार से उस लट्ठे पर लेट जाता और प्रार्थना करते करते सो जाता। वहाँ ऊपर मैं कुछ दिनों तक रहा, बस न तो कुछ खाया और पिया, बस वहाँ पर प्रार्थना कर रहा था। और थोड़ी सी ताजी हवा लेने के लिए मैं बाहर चलकर गया, उस गुफा से बाहर गया। वहाँ पर ठंडा था, पीछे अंदर नमी थी। सो फिर मैं बाहर आ गया और वहाँ मेरी बाइबल रखी हुई थी जहाँ पर मैंने उसे एक दिन पहले रखा था, और उसमें इब्रानियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय का पन्ना खुला हुआ था और मैंने उसे पढ़ना आरम्भ किया। इसलिए आओ हम बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने की नींव फिर से न डालें और इत्यादि आगे, क्योंकि जिन लोगों ने एक बार ज्योति पाई है उनके लिए ये असंभव है, और जो स्वर्गीय दान और बुलावटों के भागीदार हो चुके हैं और इत्यादि। लेकिन कहा लेकिन यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है जो निकम्मी होने पर है, जिसका अंत वर्षा बार बार धरती पर पड़ती है और उसे सजाने और तैयार करने के लिए, पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और शरापित होने पर है उसका अंत जलाया जाना है और कोई चीज ऐसे निकली। उश, मैंने सोचा यहाँ है ये, मैं अब सुनूंगा जो भी कुछ वह उसने मुझे यहाँ पर जगाया है। वह मुझे ठीक अभी दर्शन देने जा रहा है। लट्ठे के छोर पर रुका रहा और प्रतीक्षा की। मैं उठा और आगे और पीछे चला, ऊपर और नीचे चला, वापस चलकर गया, कुछ भी घटित नहीं हुआ। अपनी गुफा की ओर वापस चलकर गया, कुछ भी घटित नहीं हुआ। मैं वहाँ पर खड़ा रहा। मैंने सोचा तो फिर यह क्या है। मैं बाइबल की ओर फिर से चलकर गया और ओह, यह फिर से मेरे ऊपर आया। मैंने बाइबल को उठाया और मैंने सोचा उसके अंदर क्या है जो कि वो चाहता है कि मैं पढूं। मैं वहाँ आगे तक पढ़ता गया, परमेश्वर की ओर मन फिराने और विश्वास करने और आगे तक, और मैंने वहाँ तक पढ़ा जहाँ पर ये लिखा था, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी से जो उस पर बार बार पड़ता है ताकि उसे सवारे और तैयार करे जिस उद्देश्य के लिए ये है, क्योंकि यहाँ पर यदि वो झाड़ी और ऊट कटारे उगाती है तो निकम्मी और शापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। और ओह, इसने बस मुझे हिलाकर रख दिया। और मैंने सोचा, प्रभु क्या आप मुझे एक दर्शन देने जा रहे हैं उसका। मैं वहाँ ऊपर उससे किसी और बात को पूछने के लिए गया था, तब मेरे सामने अचानक से मैंने देखा कि संसार घूम रहा है और ये पूरी तरह चपटे रूप में था और यहाँ पर सफेद वस्त्र पहने हुए एक मनुष्य था, उसका सिर ऊपर उठाए हुए इस प्रकार से बीजों को बो रहा था। और जब वो चला गया, तब जैसे ही वो पहाड़ी के ऊपर चला गया, यहाँ उसके बाद एक मनुष्य काले वस्त्रों में आया, उसका सिर नीचे की ओर था, वह बीजों को बो रहा था। और जब अच्छे बीज बढ़कर ऊपर आए तो वह गेहूं था, और जब बुरे बीज बढ़कर ऊपर आए तो वह ऊट कटारे थे। और फिर धरती पर एक बड़ा अकाल आया और गेहूं ने अपने सिर को नीचे झुका लिया था, बस लगभग नष्ट होने पर थे, वे पानी को चाहते थे। और मैंने सारे लोगों को अपने हाथ ऊपर किए हुए देखा, परमेश्वर से पानी भेजने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और फिर मैंने ऊट कटारे को देखा, उसका सिर नीचे झुका हुआ था, पानी के लिए नीचे झुका हुआ था। और ठीक तभी कुछ बड़े बड़े बादल वहाँ पर आ गए और तब जोरदार वर्षा हुई। और जब ऐसा हुआ, छोटा सा गेहूं जो पूरा छुप चुका था विश और सीधा ऊपर खड़ा हो गया, और छोटा सा ऊट कटारा जो कि उसके बगल में था विश सीधा ऊपर खड़ा हो गया। मैंने सोचा तो ये क्या है। तब ये बात मेरे समझ में आई, ये बात ऐसी है, वही वर्षा जो कि गेहूं को बढ़ने को लगाती है, ऊट कटारे को भी बढ़ने को लगाती है, और वही पवित्र आत्मा लोगों के झुंड के ऊपर गिर सकता है और ढोंगी को बस उसी प्रकार से आशीष दे सकता है जैसे कि ये दूसरों को आशीष देता है। यीशु ने कहा, तुम उन्हें उनके फलों के द्वारा पहचानोगे। इसलिए नहीं कि वह चिल्लाता है, इसलिए नहीं कि वह आनंदित होता है, लेकिन उसके फलों के द्वारा तुम उसको पहचानोगे। मैंने कहा, आप उसी स्थिति में हैं, प्रभु मैंने इसे समझ लिया। मैंने कहा, तब वास्तव में यही सच्चाई है, यह व्यक्ति आपके पास परमेश्वर को जाने बिना दान हो सकते हैं। सो तब मैं अन्य जुबान के बोले जाने का बहुत अधिक आलोचनात्मक होने लगा, आप देखो। लेकिन एक दिन फिर परमेश्वर ने उस बात को मुझ पर किस तरह से प्रमाणित किया। मैं वहाँ नीचे नदी पर बपतिस्मा दे रहा था, मेरे पहले परिवर्तित हुए लोगों को ओहियो नदी पर, और 17वें व्यक्ति को मैं बपतिस्मा दे रहा था। जैसे ही मैंने उसे बपतिस्मा देना आरंभ किया, मैंने कहा, पिता, जैसे कि मैं इसे पानी से बपतिस्मा देता हूँ, आप इसे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दें। मैंने उस व्यक्ति को पानी के अंदर डालने लगा, और तभी आकाश से एक भवंडर आया, और यहाँ वो उजाला आता है, नीचे चमक रहा था। किनारे पर जून के महीने में ठीक दोपहर के 2 बजे किनारे पर सैकड़ों और सैकड़ों लोग थे, और ये ठीक मेरे ऊपर जहाँ पर मैं था आकर रुक गया। एक आवाज वहाँ से आई और कहा, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मसीह के पहले आगमन के आगे आगे भेजा गया था, तुम्हारे पास एक संदेश होगा जो कि मसीह के दूसरे आगमन के आगे आगे चलेगा। और इस बात ने मेरे अंदर मृत्यु के जैसा डर उत्पन्न किया, और मैं वापस गया, और वे सब लोग वहाँ थे जो ढलाई का काम करने वाले लोग, और वे सभी दवा विक्रेता, और वे सारे वहाँ किनारे पर थे। मैंने लगभग 200 या 300 लोगों को उस दोपहर को बपतिस्मा दिया था, और जब उन्होंने मुझे बाहर निकाला, मुझे पानी से बाहर निकाला, डीकन और वे लोग आगे आकर उन्होंने मुझसे पूछा, कहा, उस उजाले का क्या अर्थ था। बड़े अश्वेत लोगों का झुंड जो गिल्ड एज बैप्टिस्ट कलीसिया और लोन स्टार कलीसिया से वहाँ पर थे, और बहुत से लोग जो वहाँ पर थे, जब उन्होंने उस बात को होते हुए देखा तो वे चिल्लाने लगे, लोग बेसुध हो गए। एक लड़की को मैंने वहाँ पर एक नाव से बाहर निकालने की कोशिश की जो वहाँ पर तैरने वाले वस्त्रों को पहने हुए बैठी थी, जो कलीसिया में संडे स्कूल की शिक्षिका थी, और मैंने कहा, मार्गी, क्या तुम बाहर नहीं आओगी? उसने कहा, बिली मुझे बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा, यह सही है, तुम्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे पास सुसमाचार के लिए पर्याप्त आदर होना चाहिए कि बाहर आ जाओ जहाँ पर मैं बपतिस्मा दे रहा हूँ। उसने कहा, मुझे बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। और जब वो वहाँ पर बैठी हुई थी, मेरे बपतिस्मा देने पर वह उपहास उड़ा रही थी और हंस रही थी, क्योंकि वह बपतिस्मा देने में विश्वास नहीं करती थी। तो जब प्रभु का दूत नीचे आया, वह अपनी नाव में आगे की ओर गिर पड़ी। आज वह लड़की पागलखाने में है, इसलिए आप बस परमेश्वर के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, समझे? अब बाद में एक सुंदर लड़की, उसने बाद में शराब पीना आरंभ कर दिया, उसे बियर की बोतल से मारा, उसका सारा चेहरा कट गया था। ओह, एक भयानक सी दिखने वाली स्त्री, और वहाँ यह घटित हुआ। और फिर जीवन के हर समय पर मैंने उस बात को होते हुए देखा है, उसे आगे बढ़ते हुए देखा है, उन दर्शनों को देखा है कि किस तरह से वे बातें घटित होती हैं। तब कुछ समय बाद यह बात मुझे बहुत अधिक परेशान करने लगी, और हर एक जन मुझे यह बता रहा था कि यह गलत है। और मैं अपने पुराने जाने माने स्थान की ओर चला गया, वहाँ ऊपर जहाँ हमेशा मैं प्रार्थना किया करता था, और मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितना भी प्रार्थना करता रहूँ कि वह मेरे पास न आए, ये किसी न किसी तरह आती है। और सो मैं इंडियाना के राज्य में शिकार का वार्डन था, और मैं वहाँ गया। वहाँ पर एक मनुष्य बैठा हुआ था मेरे आराधनालय में, पियानो वादक का एक भाई था, और उसने कहा, बिली क्या आप मेरे साथ मेडिसन तक कार में इस दोपहर को चलोगे? मैंने कहा, मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे वहाँ जंगल के प्रांत की ओर जाना है। और मैंने बस अपने घर आकर और अपनी बेल्ट, बंदूक की बेल्ट और अन्य सामान उतार लिया, और अपनी आस्तीन को ऊपर चढ़ाया। हम एक छोटे से दो कमरों के घर में रहते थे, और मैं नहाने जा रहा था और अपना खाना बनाने की तैयारी कर रहा था, और मैं नहा चुका था और बस घर के किनारे घूम रहा था, एक बड़े चिनार के पेड़ के नीचे था, और अचानक कोई चीज वहाँ से निकली, वुश, और मैं बस लगभग बेसुध हो गया, और मैंने देखा, और मैं जान गया कि यह फिर से वही है। मैं उन सीढ़ियों पर बैठ गया, और वह तेजी से अपनी कार से बाहर निकलकर और मेरे पास दौड़कर आया। कहा, बिली क्या तुम बेहोश हो रहे हो? मैंने कहा, नहीं श्रीमान। उसने कहा, बिली क्या बात है? और मैंने कहा, मैं नहीं जानता। मैंने कहा, भाई तुम बस आगे बढ़ो, सब ठीक है, धन्यवाद। मेरी पत्नी बाहर आई और पानी की एक सुराही को लेकर आई। उसने कहा, प्रिय क्या बात है? मैंने कहा, हृदय प्रिय कोई बात नहीं है। सो उसने कहा, अब आप आ जाओ, रात का खाना तैयार है। और उसने अपने हाथ को मेरे चारों ओर रखकर मुझे अंदर ले जाने की कोशिश की। मैंने कहा, प्रिय मैं तुम्हें कुछ तो बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, तुम उन्हें फोन कर दो और उनको ये बता दो कि मैं इस दोपहर वहाँ पर नहीं आ पाऊँगा। मैंने कहा, मेरा हृदय प्रिय, मैंने कहा, मैं अपने हृदय में जानता हूँ कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि शैतान का मुझसे कुछ लेना देना हो। और मैंने कहा, मैं इस प्रकार से आगे नहीं जा सकता हूँ, मैं एक कैदी हूँ। मैंने कहा, हर समय जब यह इस प्रकार की चीज घटित होती रहती है, और ये दर्शन आते हैं, और इस प्रकार से इत्यादि या जो कुछ भी ये है, मैंने कहा, यह मेरे साथ होता है। मैं यह नहीं जान पाया कि यह एक दर्शन है, मैं इसे एक दर्शन नहीं कहता हूँ। मैंने कहा, वो एक प्रकार से अवचेतन है। मैंने कहा, मैं यह नहीं जानता कि यह क्या है। और प्रिय, मैं इसके साथ मूर्खता नहीं करना चाहता। वे मुझे बताते हैं कि यह शैतान है, और मैं प्रभु यीशु से प्रेम करता हूँ। ओह, उसने कहा, बिली आपको उस बात को नहीं सुनना चाहिए जो लोग आपको बताते हैं। मैंने कहा, लेकिन प्रिय दूसरे प्रचारकों की ओर देखो। मैंने कहा, मैं इसे नहीं चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं जंगल में अपने स्थान पर जा रहा हूँ, मेरे पास लगभग $15 हैं, तुम बिली का ध्यान रखना। बिली तब छोटा सा लड़का ही था, एक छोटा सा बच्चा था। मैंने कहा, तुम इसे रख लो कुछ समय के लिए, तुम्हारे और बिल्ली के लिए इतना काफी होगा। उन्हें फोन करो और उन्हें बता दो कि शायद मैं कल वापस आऊँगा, और हो सकता है मैं कभी वापस ना आऊँ। यदि मैं अगले 5 दिनों में वापस नहीं आता हूँ, मेरे स्थान पर एक व्यक्ति को रख लेना। और मैंने कहा, मेडा मैं उस जंगल से कभी बाहर नहीं आऊँगा जब तक कि परमेश्वर मुझसे यह प्रतिज्ञा नहीं करता कि वह उस चीज को मुझसे दूर कर देगा और इसे कभी फिर से होने नहीं देगा। जरा उस अज्ञानता के विषय में सोचें जो एक मनुष्य हो सकता है। और मैं उस रात वहाँ ऊपर गया। अगले दिन होने से पहले ही मैं उस छोटे से पुराने कमरे में वापस चला गया। ये काफी देर हो गई थी। अगले दिन मैं ऊपर अपने शिविर में जाने वाला था, जो कि वहाँ ऊपर था उस पहाड़ी के और आगे, मतलब उस पहाड़ पर, और वहाँ जंगल में जाना है। मैं नहीं सोचता कि FBI मुझे वहाँ पर ढूंढ सकती है। तो यह छोटा सा पुराना कमरा, मैं उस दिन सारी दोपहर प्रार्थना करता रहा और इससे पहले कि बहुत अंधेरा हो जाए मैं प्रार्थना करता। बाइबल में वहाँ पर पढ़ रहा था जहाँ पर लिखा हुआ था भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ता के अधीन होती है। मैं यह नहीं समझ पाया, सो ये उस छोटे से पुराने कमरे में बहुत अंधेरा हो गया जहाँ मैं मछली पकड़ा करता था। जब मैं एक छोटा लड़का था वहाँ पर मेरे पास एक मछली पकड़ने का कांटा था और मैं वहाँ पर जाया करता था और मछली पकड़ता और सारी रात रुका रहता। बस छोटी सी टूटी फूटी कोठरी वहाँ पर बनी हुई थी, ये बहुत वर्षों से वहाँ पर थी। कुछ किराएदारों ने इसे पहले उपयोग किया होगा जिससे कि यह सब ऐसा हो गया। और सो मैं वहाँ पर बस रुका हुआ था और मैंने सोचा तो ठीक है, सुबह के 1 बज गए, 2 बज गए, सुबह के 3 बज गए। मैं फर्श पर यहाँ से वहाँ चल रहा था, आगे और पीछे चल रहा था। मैं वहाँ पर एक छोटे से पुराने स्टूल पर बैठ गया, एक छोटे स्टूल पर नहीं, किसी चीज का छोटा सा पुराना बक्सा था, और मैं वहाँ पर बैठ गया और मैंने सोचा, हे परमेश्वर, आप ये मेरे साथ क्यों करते हैं? मैंने कहा, पिता, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और मैं शैतान के वश में नहीं होना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वे बातें मेरे साथ घटित हों। कृपया परमेश्वर, इसे मेरे साथ अब और न होने देना। मैंने कहा, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं नरक में जाना नहीं चाहता हूँ। यदि मैं गलत हूँ तो मेरे लिए प्रचार करने, प्रयास करने और अपनी मेहनत लगाने का क्या फायदा? और मैं केवल अपने आप को ही नरक में नहीं लेकर जा रहा हूँ, मैं हजारों दूसरे लोगों को रास्ते से भटका रहा हूँ, या उन दिनों में दूसरे सैकड़ों लोगों को। और मैंने कहा, मेरे पास एक बड़ी सेवकाई थी और मैंने कहा, तो मैं यह नहीं चाहता हूँ कि यह बात मेरे साथ फिर से कभी भी घटित हो। और मैं इस छोटे से स्टूल पर बैठ गया और मैं बस इस तरह की स्थिति में बैठा रहा। और अचानक से मैंने कमरे में एक उजाले को जगमगाते हुए देखा और मैंने सोचा कि कोई तो टॉर्च को लेकर आ रहा है। और मैंने चारों ओर देखा और मैंने सोचा, अच्छा, और यहाँ पर यह ठीक मेरे सामने था और फर्श पर पुराने लकड़ी के तख्ते थे और वहाँ ये था, ठीक ये मेरे सामने था। एक छोटी सी अंगीठी या स्टोव कोने में रखा हुआ था, उसका ऊपरी हिस्सा टूटकर उससे अलग था और ठीक यहाँ अंदर फर्श पर एक उजियाला था। और मैंने सोचा, अच्छा, ये कहाँ से आ रहा है? अच्छा, यह नहीं आ सकता। मैंने चारों ओर देखा और यहाँ पर वो मेरे ऊपर था, वही उजियाला वहाँ पर ठीक मेरे ऊपर था, ठीक इस प्रकार से ठहरा हुआ था, आग की तरह गोल गोल चक्कर लगा रहा था, एक प्रकार से पन्ना या हरे मणि रंग का था। ओह, वुश वुश वुश, उस प्रकार से ठीक इसके ऊपर इस तरह से। और मैंने उसकी ओर देखा, मैंने सोचा, ये क्या है? अब इसने मुझे डरा दिया। मैंने किसी को तो आते हुए सुना, बस केवल चल रहा था, ये नंगे पैर था। और मैंने एक मनुष्य के पैर को अंदर आते हुए देखा। कमरे में बहुत अंधेरा था सभी ओर सिवाय उस स्थान के जहाँ पर वो ठीक नीचे की ओर रोशनी चमक रही थी। और मैंने एक मनुष्य के पैर को अंदर आते देखा और जब वो कमरे के अंदर आया, आगे चलकर आया, वो एक मनुष्य लगभग, वो दिखने में लगभग 200 पाउंड वजन का दिखाई देता था। वो हाथ को इस प्रकार से बांधे हुए था। अब मैंने इसे हवा के भवंडर में देखा था, मैंने उसे मुझसे बात करते हुए सुना था और उसे उजाले के रूप में देखा था, लेकिन पहली बार मैंने इसे कभी ऐसे स्वरूप में देखा था। वह मेरे बहुत ही नजदीक चलकर आया। अच्छा, ईमानदार मित्रों, मैंने सोचा कि मेरा हृदय जवाब दे देगा। मैं बस कल्पना कीजिए, आप अपने आप को वहाँ पर रखकर देखिए, यह चीज आपको भी उसी प्रकार से महसूस कराएगा। हो सकता है कि आप मार्ग पर मुझसे भी आगे रहे हों, हो सकता है कि आप मुझसे भी अधिक समय से मसीही रहे हों, लेकिन यह चीज आपको उसी प्रकार से महसूस कराएगी, क्योंकि सैकड़ों और सैकड़ों गुना उसके मुझसे मिलने के बाद जब वो मेरे नजदीक आता है तो यह चीज मुझे शक्तिहीन कर देती है। कभी कभी यहाँ तक कि यह मुझे देती है, मैं लगभग पूरी तरह से बेहोश हो जाता हूँ। बहुत सी बार जब मैं मंच को छोड़ता हूँ, मैं बस बहुत अधिक कमजोर हो जाता हूँ। यदि मैं बहुत अधिक समय तक रुका रहता हूँ तो मैं पूरी तरह से मूर्छित हो जाऊंगा। वे मुझे कार में घंटों तक यहाँ वहाँ लेकर चलते हैं। मैं यहाँ तक नहीं जान पाता हूँ कि मैं कहाँ हूँ और मैं इसे समझा नहीं सकता हूँ। आप बाइबल में यहाँ पर पढ़ें और यह इसे समझाएगी कि यह बात क्या है। वचन ऐसा कहता है। सो मैं वहाँ पर बैठा हुआ था और उसकी ओर देख रहा था। मैंने इस प्रकार से अपने हाथों को ऊपर किए हुए था, वह सीधे मेरी ओर देख रहा था, बस उतना ही मनोहर। लेकिन उसकी बहुत ही गंभीर आवाज थी और उसने कहा, मत डर, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति से भेजा गया हूँ। और जब उसने उस आवाज में बोला, यह वही आवाज थी जिसने बहुत पहले ऊपर मुझसे तब बोला था जब मैं 2 वर्ष का था। मैं जानता था कि यह वही था और मैंने सोचा अब और इसे सुने, अब बातचीत को सुने। मैं उसे जितना संभव हो सके शब्द दर शब्द बताऊंगा जितना मैं जानता हूं, क्योंकि मैं शायद ही इसे याद कर पाऊंगा। उसने, मैंने कहा, उसकी ओर उस प्रकार से देखा, उसने कहा, मत डर, मैं बिल्कुल शांत था। कहा, मैं स्वर शक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति से तुम्हें यह बताने के लिए भेजा गया हूँ कि तुम्हारा अनोखा जन्म, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जन्म वहाँ पर किस तरह से हुआ था, वही प्रकाश मेरे ऊपर आकर ठहर गया था जब मेरा जन्म हुआ था। और तो उसने कहा, तुम्हारा अनोखा जन्म और गलत समझा गया जीवन, यह इस ओर संकेत करता है कि तुम सारे संसार में जाओगे और बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करोगे। और कहा, और इसकी परवाह किए बिना कि उनके पास और उसी ने नियुक्त किया, परमेश्वर जो मेरा न्यायी है जानता है कि उसी ने कैंसर को नियुक्त किया। कहा, कुछ भी नहीं, यदि तुम लोगों को अपने ऊपर विश्वास दिला पाओ और यदि तुम प्रार्थना करते समय ईमानदार बने रहो, कुछ भी तुम्हारी प्रार्थना के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, यहाँ तक कि कैंसर भी नहीं। समझे, यदि तुम लोगों को अपने ऊपर विश्वास दिला पाओ। और मैंने देखा कि वो मेरा शत्रु नहीं था, वो मेरा मित्र था। और मैं नहीं जान पाया कि क्या मैं मर रहा था या क्या घटित हो रहा था जब वो मेरी ओर इस प्रकार से आ रहा था। और मैंने कहा, अच्छा श्रीमान, मैंने कहा, मैं हूँ, मैं उन चंगाइयों और इस प्रकार की चीजों और दानों के विषय में क्या जानता था। मैंने कहा, अच्छा श्रीमान, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ। और मैंने कहा, मैं अपने लोगों के बीच में हूँ, मैं अपने लोगों के साथ में रहता हूँ जो कि निर्धन है, मैं अशिक्षित हूँ। और मैंने कहा, और मैं नहीं कर सकता हूँ, वे मुझे नहीं समझ पाएंगे। मैंने कहा, वे मेरी नहीं सुनेंगे। और उसने कहा, जैसे कि भविष्यवक्ता मूसा को 2 दान चिन्ह दिए गए थे, मतलब ताकि उसकी सेवकाई को प्रमाणित करे, वैसे ही तुम्हें भी 2 दिए जाएंगे, वैसे ही तुम्हारी सेवकाई को प्रमाणित करने के लिए 2 दान दिए जाएंगे। उसने कहा, उनमें से एक यह होगा कि तुम उस व्यक्ति के हाथ को पकड़ोगे जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो अपने बाएं हाथ से, और उनके दाएं हाथ को पकड़ोगे। और कहा, फिर बस शांत खड़े रहना, और ऐसा होगा तुम्हारे शरीर पर एक भौतिक प्रभाव होगा जो तुम्हारे शरीर पर होगा। और कहा, फिर तुम प्रार्थना करना, और यदि वह चला जाता है, वो बीमारी लोगों में से चली जाएगी, यदि ये छोड़कर नहीं जाती है, बस आशीष मांगना और चले जाना। अच्छा, मैंने कहा, श्रीमान, मैं डरता हूँ कि वे मुझे ग्रहण नहीं करेंगे। उसने कहा, और अगली बात यह होगी, यदि वे उस बात को नहीं सुनेंगे, बाद में वे इसे सुनेंगे। कहा, फिर ऐसा होगा कि तुम उनके हृदय के उन गुप्त विचारों को जान जाओगे। कहा, वे इसे सुनेंगे। अच्छा, मैंने कहा, श्रीमान, इसलिए मैं आज रात यहाँ पर हूँ। मुझे मेरे याजक वर्ग के लोगों ने बताया है कि वे चीजें जो कि मेरे पास आ रही हैं, वे गलत हैं। उसने कहा, तुम इस संसार में इसी उद्देश्य के लिए जन्मे हो। समझे, दान और बुलावट बिना पश्चाताप के मिलते हैं। उसने कहा, तुम्हारा जन्म इस संसार में इसी उद्देश्य के लिए हुआ था। और मैंने कहा, अच्छा श्रीमान, मैंने कहा कि मेरे याजक वर्ग के लोगों ने यह बताया था कि यह वो दुष्ट आत्मा है। और मैंने कहा, वे इसलिए मैं यहाँ पर प्रार्थना कर रहा हूँ, और यहाँ पर वो है जिसका उसने मुझे हवाला दिया। उसने मुझे प्रभु यीशु के पहले आगमन के विषय में बताया। और मैंने कहा, मित्रों, विचित्र बात यह थी कि, तो ठीक है, मैं एक मिनट के लिए ठीक यहाँ पर रुकूंगा, पीछे जाऊंगा। जिस बात ने मुझे और अब तक सबसे अधिक भयभीत किया था, हर एक बार जब भी मेरी भेंट भविष्य बताने वाले से हुई, वे पहचान जाते थे कि कुछ तो घटित हुआ है, और वह बात लगभग मुझे मार देती थी। उदाहरण के लिए, एक दिन मेरा चचेरा भाई और मैं एक मेले के स्थान से होकर जा रहे थे, और हम बस लड़के ही थे, साथ साथ चल रहे थे, तो वहाँ पर एक छोटी सी भविष्य बताने वाली उन तंबुओं में से एक के बाहर बैठी हुई थी। वो एक युवा स्त्री थी, दिखने में सुंदर एक युवा स्त्री थी, वो वहाँ पर बैठी हुई थी, और हम सभी जा रहे थे, वहाँ से गुजर रहे थे। उसने कहा, कहो, तुम एक मिनट के लिए यहाँ पर आओ। और हम तीनों लड़कों ने पीछे मुड़कर देखा, और उसने कहा, तुम जो कि धारीदार स्वेटर पहने हुए हो, वह मैं था। और मैंने कहा, जी हाँ महोदया, मैंने सोचा कि शायद वह मुझसे यह चाहती है कि मैं जाकर उसके लिए कोक सोडा या उस प्रकार की कुछ और चीज लेकर आऊं, और एक युवा स्त्री थी, शायद 20 वर्ष के आसपास की उम्र की थी या कुछ तो ऐसे ही वहां बैठी हुई थी, और मैं चल कर गया। मैंने कहा, हाँ महोदया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? और उसने कहा, कहे तो क्या तुम जानते हो कि एक उजियाला तुम्हारे पीछे पीछे चलता है? तुम्हारा जन्म विशेष चिन्ह के नीचे हुआ था। मैंने कहा, आपका क्या मतलब है? उसने कहा, अच्छा, तुम्हारा जन्म विशेष चिन्ह के नीचे हुआ था, वहाँ एक उजियाला है जो कि तुम्हारे पीछे पीछे चलता है, तुम्हारा जन्म किसी दिव्य बुलावट के लिए हुआ है। मैंने कहा, स्त्री, यहाँ से दूर चली जा। मैंने आगे चलना आरंभ किया, क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझे ये बताती थी कि वे चीजें शैतान होती हैं। वह सही थी, इसलिए मैंने उस बात ने मुझे भयभीत कर दिया। और एक दिन जब मैं जंगल में शिकार का प्रबंधक था, मैं एक बस से ऊपर जा रहा था और मैं बस में चढ़ गया। हमेशा से ऐसा दिखाई दिया, आत्माओं के द्वारा प्रभावित होता था। मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था और यह नौका चालक मेरे पीछे खड़ा हुआ था, और मैं गश्त पर जा रहा था, और मैं हेनरीविले जंगल के प्रांत में जा रहा था। मैं बस में था, मैं कुछ तो विचित्र सा अनुभव कर रहा था। मैंने वहाँ हर कहीं देखा, और वहाँ पर अच्छे कपड़े पहने हुए एक भारी सी महिला बैठी हुई थी। उसने कहा, आप कैसे हैं? कहा, आप कैसी हैं? मैंने सोचा कि वह बस एक ऐसी ही महिला है, आप जानते हैं, जो बात कर रही है, तो मैं बस रुका रहा। उसने कहा, मैं आपसे एक मिनट बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, जी महोदया। मैं पीछे मुड़ा। उसने कहा, क्या आप जानते हो कि आपका जन्म किसी चिन्ह के नीचे हुआ था? मैंने सोचा, यह उन अजीब सी महिलाओं में से एक महिला है, सो मैंने बस बाहर की ओर देखा, और सो मैंने तब एक शब्द नहीं कहा, बस मैं। उसने कहा, क्या मैं आपसे एक मिनट बात कर सकती हूँ? मैं बस ऐसा ही रहा। उसने कहा, इस प्रकार से बर्ताव मत करो। मैं बस आगे की ओर देखता रहा। मैंने सोचा, यह सज्जन व्यक्ति की तरह से बर्ताव करना नहीं है। उसने कहा, मैं आपसे कुछ क्षण के लिए बात करना चाहती हूँ। मैं बस आगे की ओर देखता रहा, और मैंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने तुरंत सोचा, मैं सोचता हूँ कि वह बाकी उन सब लोगों की तरह से नहीं कहेगी। मैं पीछे मुड़ा। मैंने सोचा, ओह मेरे परमेश्वर, यह मुझे कांपने को लगा देती है। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उस बात को सोचने से घृणा करता था। मैं पीछे मुड़ा। उसने कहा, हो सकता है मैं इसे स्वयं अच्छी तरह से समझा पाऊँ। उसने कहा, मैं एक ज्योतिषी हूँ। मैंने कहा, मैंने यही सोचा था कि आप कुछ उसी तरह की हैं। उसने कहा, मैं शिकागो अपने पुत्र से मिलने के लिए जा रही हूँ, जो कि एक बैप्टिस्ट सेवक है। मैंने कहा, हाँ महोदया। उसने कहा, किसी ने कभी आपको ये बताया है कि आपका जन्म एक चिन्ह के नीचे हुआ है? मैंने कहा, नहीं महोदया, मैंने उससे वहाँ पर झूठ बोला। देखो, और मैंने कहा, बस ये देखना चाहता था कि वो क्या कहने जा रही है। और उसने कहा, मैंने कहा, नहीं महोदया। और उसने कहा, क्या नहीं, क्या सेवकों ने आपको कभी नहीं बताया है? मैंने कहा, मेरा सेवकों के साथ में कुछ लेना देना नहीं है। और उसने कहा, और मैंने कहा, उसने मुझसे कहा। मैंने कहा, अच्छा। उसने कहा, यदि मैं आपको ठीक ठीक ये बता दूं कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, क्या आप मेरा विश्वास करोगे? मैंने कहा, नहीं महोदया। और उसने कहा, अच्छा, मैं ये बता सकती हूँ कि आपका जन्म कब हुआ था? मैंने कहा, मैं ये विश्वास नहीं करता हूँ। और उसने कहा, आपका जन्म 6 अप्रैल 1909 में सुबह 5 बजे हुआ था। मैंने कहा, यह सही है। मैंने कहा, आपको ये कैसे पता है? मैंने कहा, इस नौका चालक को बताओ कि उसका जन्म कब हुआ था। कहा, मैं नहीं बता सकती हूँ। और मैंने कहा, क्यों, आप कैसे जानती हैं? कहा, देखो श्रीमान। उसने कहा, अब उसने ज्योतिष शास्त्र के विषय में बात करना आरंभ किया, और उसने कहा, हर इतने सारे वर्षों के, कहा, आपको याद है जब सुबह के तारे ने आकर उसने ज्ञानी पुरुष को यीशु मसीह की ओर अगुवाई की थी? और मैं एक प्रकार से रुक गया, आप जानते हैं। मैंने कहा, अच्छा, मैं धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ। और उसने कहा, अच्छा, क्या आपने सुना है कि ज्ञानी पुरुष यीशु को देखने आए थे? मैंने कहा, हाँ। और उसने कहा, अच्छा, वे ज्ञानी पुरुष कौन थे? ओह, मैंने कहा, वे बस ज्ञानी पुरुष थे, बस यही सब मैं जानता हूँ। उसने कहा, अच्छा, ज्ञानी पुरुष क्या होते हैं? उसने कहा, वे वही होते हैं जो मैं हूँ, एक ज्योतिष विद्या बताने वाले, वे उन्हें तारों को ताकने वाला कहते हैं। और उसने कहा, आप जानते हो, इससे पहले कि परमेश्वर धरती पर कुछ करता है, वो हमेशा ही उस बात को आकाश में घोषित करता है, उसके बाद धरती पर करता है। और मैंने कहा, मैं नहीं जानता। और उसने कहा अच्छा, उसने दो या तीन दो तीन के नाम बताए, जैसे कि मार्स, जुपिटर और वीनस। ये वो तारे नहीं थे, लेकिन उसने कहा उन्होंने उनके रास्तों को पार करके और एक साथ आए और बनाया। कहा वहाँ तीन ज्ञानी पुरुष थे जो प्रभु यीशु से मिलने के लिए आए थे, और एक हाम के वंश से था और एक शेम से और अगला एक येपेस से था। और कहा जब वे बैतलहम में एक साथ मिले तो वे तीन तारे जिनसे वे धरती पर का हर एक व्यक्ति, कहा उनका उन तारों के साथ कुछ तो संबंध होता है। कहा वहाँ उस नौका चालक से पूछो, जब चांद चला जाता है और आकाशीय ग्रह निकल जाता है, ज्वार भाटा या तेज लहरें इसके साथ नहीं जाती हैं और अंदर नहीं आती हैं। मैंने कहा मुझे उससे पूछने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे जानता हूँ। और उसने कहा अच्छा, आपका जन्म का संबंध उन तारों से है जो वहाँ ऊपर हैं। और मैंने कहा अच्छा, ये मैं नहीं जानता। और उसने कहा जब ये तीन ज्ञानी पुरुष आए, और कहा जब वे तीन तारे, जब वे तीन दिशाओं से आकर और वे बैतलहम में मिले थे, और उन्होंने कहा कि उन्होंने पता लगाया और परामर्श किया, और एक हाम, शेम और येपेत के वंश में से आया था जो कि नूह के तीन पुत्र थे। और उसने कहा फिर वे आए और प्रभु यीशु मसीह की आराधना की, और कहा जब वे चले गए, कहा वे उसके लिए उपहारों को लेकर आए थे और उसे भेंट दी। और कहा यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में कहा कि जब यह सुसमाचार सारे संसार, हाम, शेम और येपेत के लोग में प्रचार हो जाएगा, तो वो फिर से वापस आएगा। और उसने कहा अब वे ग्रह, आकाशीय ग्रह, जैसे वे गोल गोल घूमते हैं, कहा वे अलग हो गए, उसके बाद से वे कभी भी धरती पर नहीं आए, लेकिन कहा हर 100 वर्ष के बाद वे अपने चक्कर को इस प्रकार से काटते हैं। यदि यहाँ पर कोई खगोल विद्या जानने वाला होगा तो आप जान सकते कि वह किस विषय में बात कर रही थी, मैं नहीं जानता। सो जब वह बात कहा वे इस प्रकार से चक्कर काटते हैं, और कहा अब तक के सबसे महान उपहार की याद में जो मनुष्य जाति को कभी दिया गया था, जब परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया। जब ये ग्रह उनके अपने चक्कर को फिर से काटते हैं, क्यों? कहा वह धरती पर एक और उपहार को भेजता है, और कहा आपका जन्म उस समय के काटने पर हुआ था, और कहा यही कारण है कि मैं इस बात को जानती हूँ। अच्छा, फिर मैंने कहा महिला, पहली बात मैं इस विषय में कुछ भी विश्वास नहीं करता हूँ, मैं धार्मिक नहीं हूँ और मैं उस विषय में और अधिक नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं वहाँ से चला गया, और सो मैंने उसकी बात को जल्दी से बीच में ही काट दिया। सो मैं बाहर निकल गया, और हर बार कोई मैं उनमें से ऐसी ही किसी के आसपास आता तो इसी प्रकार से वहाँ पर होता था, और मैंने सोचा वे शैतान इस प्रकार से क्यों करते हैं। फिर प्रचारक कहते हैं ये शैतान है, ये शैतान है। उन्होंने मुझे इस बात पर विश्वास दिलाया, और फिर उस रात वहाँ ऊपर जब उसने इसका उल्लेख किया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ओ ये सारे माध्यम और चीजें उस प्रकार से क्यों होती है, और वे शैतान से भरे हुए लोग क्यों होते हैं जो मुझे उस विषय में हमेशा बताते रहते हैं, और याजक वर्ग के लोग जो मेरे भाई हैं मुझे ये बताते हैं कि यह दुष्ट आत्मा का काम है। अब सुनना कि उसने क्या कहा। यह एक जिसकी तस्वीर वहाँ पर लटकी हुई है, उसने कहा जैसा कि यह तब था वैसा ही ये अब है, और उसने मुझसे उल्लेख करना आरंभ किया कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई ने जगह लेना आरंभ किया, सेवकों ने कहा वो बाल जबूल है, शैतान है, लेकिन शैतानों ने कहा वो परमेश्वर का पुत्र है, इसराइल का पवित्र जन है। शैतान और पौलुस और बरनाबस की ओर देखो, जब वे वहाँ पर थे और प्रचार कर रहे थे, सेवकों ने कहा ये मनुष्य संसार को उलट पुलट कर रहे हैं, वे बुरे हैं, वे शैतान हैं। और वह छोटी सी एक बूढ़ी भविष्य बताने वाली स्त्री जो वहाँ बाहर सड़क पर थी, उसने ये पहचान लिया कि पौलुस और बरनाबस परमेश्वर के लोग थे। कहा ये परमेश्वर के जन हैं जो कि तुम्हें जीवन का मार्ग बताते हैं। क्या ये ठीक बात है? आत्मिकवादी और भावी बताने वाले शैतान से ग्रस्त लोग। लेकिन हम धर्म शिक्षा ज्ञान में इतना अधिक फंस जाते हैं, इतना तक कि हमको आत्मा के विषय में कुछ भी पता नहीं होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझसे इस बात के बाद प्रेम करेंगे, लेकिन बस यही बात है। मेरा मतलब पेंटिकॉस्ट से भी है, ये सही है। बस यहाँ वहाँ चिल्लाना और नाचने का यह अर्थ नहीं होता है कि आप आत्मा के विषय में कुछ तो जानते हैं। यह तो व्यक्तिगत संपर्क होता है, आमने सामने, यही है जिसकी आपको आवश्यकता है। उसी प्रकार की कलीसिया को परमेश्वर उठाकर खड़ा करने जा रहा है। यह सही है जब वे एकता और सामर्थ्य में आत्मा में एक साथ आते हैं। और उसने उस बात का उल्लेख किया, और उसने मुझे बताया कि किस प्रकार से सेवकाई को गलत समझा गया, और मुझे आश्वासन दिया कि सेवकाई को गलत समझा गया है। और जब उसने मुझे उस सब के विषय में बताया और कैसे यीशु, मैंने कहा अच्छा इसके विषय में क्या, ये बातें जो कि मेरे साथ होती हैं। और आप देखो, उसने कहा ये और कई गुना बढ़ जाएगी और बढ़ती जाएगी। और उसने मुझसे उल्लेख किया, मुझे ये बताया कि कैसे यीशु ने इसे किया, वो कैसे आया और वो सामर्थ्य से भरा हुआ था कि वह बातों को पहले से जानता था और कुएं पर स्त्री को बता सकता था। उसने चंगा करने वाला होने का दावा नहीं किया, उसने दावा किया कि वह बस उन चीजों को करता है जैसा पिता उसे दिखाता था। मैंने कहा अच्छा वो किस प्रकार का आत्मा होगा, उसने कहा ये पवित्र आत्मा था। फिर वहाँ मेरे अंदर कुछ तो हुआ कि मुझे ये एहसास हुआ कि ठीक वही चीज जिससे मैंने अपनी पीठ घुमा ली थी उसी के लिए परमेश्वर मुझे यहाँ पर लेकर आया था। और मैंने ये एहसास किया कि यह उन गुजरे दिनों में उन फरीसियों की तरह थी, उन्होंने मुझसे वचन का गलत अनुवाद किया था। सो तब से लेकर मैंने इसका अपना अनुवाद देना आरम्भ किया जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा। मैंने उससे बताया मैं जाऊंगा, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और उस दूत ने फिर से उस प्रकाश में कदम रखा जो पास आकर घूमने लगा और घूमने लगा और घूमने लगा और घूमने लगा और उसके पैरों के पास इस तरह से घूमने लगा, उस प्रकाश में ऊपर उठकर और इमारत से बाहर चला गया। मैं एक नया व्यक्ति बनकर घर गया, कलीसिया की ओर चलकर गया और लोगों को उस बात के विषय में बताया। वो यह रविवार रात को हुआ था और बुधवार रात को वे एक स्त्री को वहाँ पर लेकर आए जो कि मेयोस की एक नर्स थी और कैंसर से मर रही थी। वह एक छाया के अलावा कुछ नहीं थी। जब मैं वहाँ पर उसको पकड़ने के लिए चलकर गया, मेरे सामने एक दर्शन आया, उसे फिर से नर्स का काम करते हुए दिखाया और वह लुइसविले में बहुत से वर्षों से मरे हुओं की सूची में थी। अब वो वहाँ जेफरसन विले में है, वह वर्षों से नर्स का काम कर रही है। क्योंकि मैंने वहाँ ऊपर देखा और मैंने उस दर्शन को देखा, मैं पीछे मुड़ा, मैं मुश्किल से ही जान पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वहाँ पर खड़ा हुआ था जब वे पहली बार उस मामले को लेकर आए थे और वहाँ पर रखा था, तो मैं थरथरा गया था। और नर्स और वे लोग वहाँ उसके चारों ओर खड़े हुए थे और वो वहाँ पर लेटी हुई थी और उसका चेहरा पूरी तरह से धस गया था, उसकी आँखें पीछे की ओर हो गई थी। मार्गी मॉर्गन, यदि आप उन्हें पत्र लिखना चाहते हैं तो पता है 411 नॉबलोच एवेन्यू जेफरसन विले इंडियाना, या आप क्लार्क काउंटी अस्पताल जेफरसन विले इंडियाना में लिखें। उसे अपनी उस गवाही को देने दो। मैंने वहाँ नीचे की ओर देखा और वहाँ यह ऐसा पहला मामला था कि मैंने उसे यहाँ बाहर आते देखा, एक दर्शन आया। मैंने उस स्त्री को फिर से नर्स का कार्य करते हुए देखा, वो यहाँ वहाँ चल रही थी, अच्छी और हष्ट पुष्ट और स्वस्थ थी। मैंने कहा यहोवा यो कहता है तुम जियोगी और नहीं मरोगी। उसका पति जो संसार की चीजों में एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, उसने मेरी तरफ इस प्रकार से देखा। मैंने कहा श्रीमान आप मत डरो, आपकी पत्नी जीवित रहेगी। उसने मुझे बाहर बुलाया, कहा दो या तीन डॉक्टरों को बुलाया, कहा आप उनको जानते हैं? मैंने कहा हाँ, क्यों? कहा मैंने उसके साथ में गोल्फ खेला है। उसने कहा कैंसर उसकी आंतों के चारों ओर फैल गया है, आप उसे यहाँ तक एनिमा से भी धोकर बाहर नहीं निकाल सकते। मैंने कहा मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि उसे क्या हुआ है, यहाँ अंदर कुछ तो है, मैंने एक दर्शन देखा है। और वो व्यक्ति जिसने मुझे बताया कहा जो कुछ भी मैंने देखा है कि मैं उसे कहूँ और वैसा ही होगा, और उसने मुझे बताया और मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। उसके कुछ दिनों के बाद वह अपने बर्तन धो रही थी, इधर उधर जा रही थी। उसका वजन अब लगभग 165 पाउंड है, वह पूरी तरह से स्वस्थ है। फिर जब मैंने स्वीकार कर लिया, ये बात दूर तक गई, तब रॉबर्ट डॉट रटी ने मुझे बताया और ये बात टेक्सास से होते हुए संसार भर में हर कहीं पर गई। और एक रात लगभग 4 या 5 बार मैं अन्य जुबान में बोले जाने और ऐसी ही बातों को समझ नहीं सकता था। मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में विश्वास करता था, यह विश्वास करता था कि लोग अन्य जुबान में बोल सकते हैं। और एक रात जब मैं बाहर चल रहा था सैन एंटोनियो टेक्सास के एक गिरजाघर में, वहाँ से बाहर निकलते हुए एक छोटा लड़का यहाँ बैठा हुआ था, अन्य जुबान में बोलने लगा जैसे कि एक बंदूक चलती है या जैसे कि एक मशीन गन तेजी से चलती है। बहुत ही पीछे, वहाँ बहुत ही पीछे एक लड़का खड़ा हुआ और कहा यहोवा यो कहता है। वो व्यक्ति जो चलकर मंच पर जा रहा है, वो एक सेवकाई को लेकर आगे जा रहा है जो स्वर शक्तिमान परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है। और जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के पहले आगमन के आगे भेजा गया था, वैसे ही वो एक संदेश लेकर आया है जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का कारण बनेगा। मैं चाहता था कि मैं कहीं तो नीचे घुस जाऊं। मैंने ऊपर की ओर देखा। मैंने कहा, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? तो उसने कहा, नहीं श्रीमान। मैंने कहा, क्या आप उसे जानते हो? तो उसने कहा, नहीं श्रीमान। मैंने कहा, क्या आप मुझे जानते हो? तो उसने कहा, नहीं श्रीमान। मैंने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैंने अखबार में से पढ़ा था और अक्सर यह सभाओं की पहली रात थी। मैंने वहाँ पर देखा और मैंने कहा, आप यहाँ पर कैसे आए? कहा, मेरे कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि आप यहाँ पर आने वाले हैं, एक दिव्य चंगाई करने वाला, और मैं आ गया। मैंने कहा, क्या आप सभी एक दूसरे को नहीं जानते हो? उसने कहा, नहीं। ओह मेरे परमेश्वर, वहाँ मैंने पवित्र आत्मा की उस सामर्थ को देखा। जबकि एक बार वहाँ पहले मैंने सोचा था कि यह गलत था, और मैं जान गया कि मैं यही परमेश्वर का दूत था जो उन लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ था जिन लोगों के पास वे बातें थी। हालांकि उनके पास झूठी बातें थी और बहुत सारी गड़बड़ी और इस पर बहुत सी निर्थक बातें थी, लेकिन वहाँ अंदर एक सच्ची वस्तु थी, मसीह, और मैंने देखा कि यह सत्य था। ओह कई वर्ष गुजर गए और सभाओं में लोग दर्शनों और उन चीजों को देखते रहे। एक बार एक फोटो खींचने वाले ने इसी तस्वीर में खींचा था जब मैं कहीं तो अरकनसास में खड़ा हुआ था। मैं विश्वास करता हूँ ये ऐसा ही था, लगभग इसी प्रकार की सभा में, लगभग इसी प्रकार का सभागार था, और मैं खड़ा हुआ था और इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। लोग जानते थे, वे बैठकर और सुनते थे, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और इत्यादि। और फिर मैंने संयोगवश देखा, वो द्वार से अंदर आ रहा था। यहाँ ये आता है ऐसे करते हुए, वुश वुश। मैंने कहा, मुझे और अधिक नहीं बोलना होगा क्योंकि अब ये यहाँ अंदर आ गया है। और वह ऊपर की ओर गया और लोग चिल्लाने लगे। जहाँ पर मैं था वो वहाँ तक आया और वहीं पास आकर ठहर गया। जैसे ही ये नीचे आ रहा था, एक सेवक दौड़कर ऊपर गया और कहा, कहे तो मैं उसे देखता हूँ। और इसने उसको इतना अंधा कर दिया जितना वो हो सकता था। वो पीछे की ओर लड़खड़ाने लगा। आप उसकी तस्वीर को ठीक वहाँ पर पुस्तक में देख सकते हैं और इसे देख सकते हैं जब वो पीछे की ओर अपने सिर को इस प्रकार से नीचे करके लड़खड़ाया। आप उसकी तस्वीर को देख सकते हैं। और वो वहाँ पर रुक गया। बस तभी अखबार के फोटोग्राफर ने इसकी उस तस्वीर को खींच लिया, लेकिन परमेश्वर तैयार नहीं था। और एक रात हॉस्टन टेक्सास में, जब ओह हजारों गुना हजारों लोग थे, हमारे पास में 800, आप उसे क्या कहते हैं कि वहाँ पर संगीत भवन में 8000 लोग थे, वे वहाँ इस बड़े सैम हॉस्टन कॉलिजियम में वापस आए। और उस रात उस वाद विवाद में, जब एक बैप्टिस्ट प्रचारक ने कहा कि मैं एक गिरे हुए ढोंगी के अलावा कुछ नहीं हूँ और एक धोखेबाज हूँ, एक धार्मिक धोखेबाज हूँ, और मुझे शहर से बाहर निकाल देना चाहिए और उसे ही इस काम को करना चाहिए। भाई बोसवर्थ ने कहा, भाई ब्रैनम, क्या आप कुछ तो इस प्रकार से होने देंगे, उसको बुलाएं? मैंने कहा, नहीं श्रीमान, मैं वाद विवाद करने में विश्वास नहीं करता हूँ। सुसमाचार विवाद करने के लिए नहीं बना है, यह जीने के लिए बना है। और मैंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको कितना भी तैयार करें, वो बस उसी तरह से ही करेगा। मैंने कहा, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि परमेश्वर उसके हृदय से बात नहीं कर सकता तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अगले दिन ये बात बाहर आई। कहा, यह दिखाता है कि वे किस चीज के बने हुए हैं। हॉस्टन कॉर्निकल, कहा, यह दिखाता है कि वे किस चीज के बने हुए हैं। वे उस बात को ग्रहण करने से डरते हैं जिस बात का वे प्रचार करते हैं। बूढ़े भाई बोसवर्थ मेरे पास आए। वे तब 70वें वर्ष में थे। वे प्यारे से बूढ़े भाई हैं। अपने हाथ को मेरे चारों ओर डाला। कहा, भाई ब्रैनम, उसने कहा, आपका ये मतलब है कि आप उस विषय पर बात नहीं करेंगे? मैंने कहा, नहीं भाई बोसवर्थ, नहीं श्रीमान, मैं उस विषय पर बात नहीं करूंगा। मैंने कहा, इससे कुछ भला नहीं होगा। मैंने कहा, जब हम मंच को छोड़ेंगे तो यह बस वाद विवाद का कारण बनता है। मैंने कहा, मैं अब सभा को करने जा रहा हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि बातें इस प्रकार से बिगड़ जाएं। मैंने कहा, बस उसे आगे जाने दो। मैंने कहा, बस ऐसा ही है, वह ऐसे ही बड़बड़ा रहा है। मैंने कहा, हम उनसे पहले भी मिले हैं और उनसे बातचीत करने से कुछ भी फायदा नहीं है। मैंने कहा, वे अपने आप ही शांत होकर शीघ्र चले जाएंगे। मैंने कहा, यदि वे एक बार सच्चाई के ज्ञान को प्राप्त कर लें और फिर वे इसे ग्रहण नहीं करेंगे, बाइबल ने कहा कि उन्होंने अलग करने वाली रेखा को पार कर लिया है और वे न तो इस संसार में और न आने वाले संसार में क्षमा किए जाएंगे। वे इसे शैतान कहते हैं और वे इस बात के लिए इसकी सहायता नहीं कर सकते हैं। वे धार्मिक आत्मा से ग्रस्त हैं। जो शैतान है। कितने लोग जानते हैं कि ये सच है कि एक शैतान की आत्मा धार्मिक होती है? जी हाँ श्रीमान, वे बस उतने ही सिद्धांतवादी होते हैं जितना कि वे हो सकते हैं। और सो फिर ये बात इतनी अच्छी नहीं लगी जब मैंने कहा सिद्धांतवादी, लेकिन यही सत्य है। भक्ति का भेद तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति का इनकार करते हैं। यह सही है, चिन्ह और चमत्कार ही हैं जो हमेशा परमेश्वर को प्रमाणित करते हैं। और उसने ये कहा अंतिम दिनों में वही चीज होगी। और ध्यान दें, बूढ़े भाई बोसवर्थ मैं, वे मेरे साथ आने वाले थे और वो एक प्रकार से थके हुए थे। वे बस अभी जापान से आए थे, वो यहाँ पर आने वाले थे। वो मेरे साथ लुबांग नामक स्थान पर आने वाले थे और सो वह, उसे हल्का बुरा जुकाम हुआ था इसलिए वह इस सभा में नहीं आ पाए, वो और उसकी पत्नी। और सो उसने, सभी यही सोचते थे कि वे काले की तरह से दिखते हैं। उसने वहाँ खड़े होकर और कहा, अच्छा भाई ब्रैनम, आप जानते हैं वे गौरवपूर्व से दिखते थे। उन्होंने कहा, मुझे जाकर उसे करने दें। और कहा, यदि आप इसे नहीं करना चाहते हैं। मैंने कहा, हे भाई बोसवर्थ, मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आप उसे करें, आप वाद विवाद में लग जाएंगे। उसने कहा, वाद विवाद का एक शब्द तक नहीं होगा। अब इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, इसे सुने। वो वहां पर गए। मैंने कहा, यदि आप वाद विवाद नहीं करेंगे तो अच्छी बात है। कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वाद विवाद नहीं करूंगा। उस रात लगभग 30,000 लोग उस सभागार में एकत्र हुए थे। भाई वुड जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उस समय वहाँ उपस्थित थे और उस सभागार में बैठे हुए थे। और मैं, मेरे लड़के ने कहा या मेरी पत्नी ने कहा, आप उस सभा में नहीं जा रहे हो। मैंने कहा, नहीं, मैं वहाँ पर जाकर और उनको वाद विवाद करते हुए सुनना नहीं चाहता हूँ। नहीं श्रीमान, मैं वहाँ जाकर और उस बात को नहीं सुन सकता। जब रात का समय आया, किसी ने तो कहा वहाँ पर जाओ। मैं, मेरा भाई और मेरी पत्नी और बच्चों ने टैक्सी ली और वहाँ पर चले गए। और मैं वहाँ बहुत ऊपर बालकनी में 30वीं सीट पर था। इस तरह से वहाँ ऊंचाई पर जाकर और बैठ गया। बूढ़े भाई बोसवर्थ वहाँ पर एक पुराने व्यवहार कुशल व्यक्ति की तरह चलकर आए। आप जानते हैं, उसने कुछ नकल करके लिख लिया। उन्होंने बाइबल की 600 विभिन्न प्रतिज्ञाओं की नकल करके लिख लिया। उसने कहा, अब डॉक्टर बेस्ट, क्या आप यहाँ पर आएंगे और इन प्रतिज्ञाओं में से एक को लेंगे और बाइबल के द्वारा गलत साबित करेंगे? उनमें से हर एक प्रतिज्ञा बाइबल में है जो आज के समय में यीशु मसीह द्वारा बीमारों को चंगा करने से संबंधित है। यदि आप उनमें से एक प्रतिज्ञा को ले सकें और बाइबल के द्वारा इसे बाइबल के साथ खंडन करें, मैं बैठ जाऊंगा, आपसे हाथ मिलाऊंगा, कहूंगा आप सही हैं। उसने कहा, जब मैं वहां पर जाऊंगा तो मैं उस बात का ध्यान रखूंगा। वह अंत में आना चाहता था जिससे कि वह भाई बोसवर्थ के प्रभाव को समाप्त कर सके, समझे? सो भाई बोसवर्थ ने कहा, अच्छा भाई बेस्ट, मैं आपसे एक बात पूछूंगा और यदि आप मुझे हाँ या ना में उत्तर देंगे, कहा हम बस इस वाद विवाद को ठीक अभी समाप्त कर देंगे। और उसने कहा मैं उस बात का ध्यान रखूंगा। उसने संचालक से पूछा कि क्या वो उससे पूछ सकते हैं? कहा हाँ। उसने कहा, भाई बेस्ट, यहोवा के छुटकारा देने वाले नाम क्या यीशु पर लागू होते हैं, हाँ या नहीं? इसने मामले को सुलझा दिया, मामला समाप्त हो गया। मैं आपको बताता हूँ, मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर कुछ तो चल रहा है। मैंने स्वयं इसके विषय में कभी नहीं सोचा था, देखो। और मैंने सोचा, ओह परमेश्वर, वह उत्तर नहीं दे सकता है, यह इसे बांध देता है। उसने कहा, अच्छा डॉक्टर बेस्ट, मैं चौंक गया हूँ। उसने कहा, मैं उसका ध्यान रखूंगा। कहा, मैं चौंक गया हूँ कि आप मेरे सबसे कमजोर प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। वो ककड़ी की तरह ठंडा पड़ गया था और वो जान रहा था कि वो कहाँ पर खड़ा हुआ है। सो उसके बाद वो तब उस वचन के साथ बैठ गया। कहा, आप अपने 30 मिनट लें, मैं उसके बाद उत्तर दूंगा। और बूढ़े भाई बोसवर्थ वहाँ बैठे रहे और उस वचन को लिया और उस व्यक्ति को एक ऐसे स्थान तक बांध दिया इतना तक कि उसका चेहरा इतना लाल हो गया कि आप लगभग उस पर से एक माचिस की तीली को जला सकते थे। वो वहाँ पर से उठा, गुस्से में था और उन पन्नों को फर्श पर फेंक दिया। वहाँ ऊपर जाकर और एक अच्छे कैपेबिलिटी उपदेश को प्रचार किया। मैं एक बैप्टिस्ट था, मैं जानता हूँ कि वे क्या विश्वास करते हैं। वो कभी नहीं, वह पुनरुत्थान पर प्रचार कर रहा था। जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा तब हमारे पास दिव्य चंगाई होगी। ओह परमेश्वर, जब हम अविनाशी हो जाएंगे तब हमें दिव्य चंगाई की क्या आवश्यकता पड़ेगी? जब नाशवान अविनाश को पहन लेता है, मरे हुए का पुनरुत्थान, उसने यहाँ तक कि उस आश्चर्य कर्म पर भी संदेह किया जो कि यीशु मसीह ने लाजरस पर किया था। कहा वह फिर से मर गया और ये बस एक अस्थायी बात थी, देखा। और जब वो उस तरह से होकर गया, उसने कहा उस दिव्य चंगाई करने वाले को सामने लाओ और मुझे उसे इस काम को करते हुए देखने दो। तब उनके पास एक छोटी सी तनावपूर्व स्थिति थी। भाई बोसवर्थ ने कहा, भाई बेस्ट, मैं आप पर अचंभित हूँ कि आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं जो मैंने आपसे पूछा है। और सो वो बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा, उस दिव्य चंगाई करने वाले को सामने लाओ और मुझे उसे काम करते हुए देखने दो। कहा, भाई बेस्ट, क्या आप ये विश्वास करते हैं कि लोग उद्धार पा रहे हैं? उसने कहा, निश्चय ही। कहा, क्या आप ये चाहते हैं कि आपको दिव्य उद्धारकर्ता के नाम से बुलाया जाए? कहा, बिल्कुल भी नहीं। ना ही ये आपको एक दिव्य उद्धारकर्ता नहीं बनाएगा, क्योंकि आपने प्राण के उद्धार का प्रचार किया है। उसने कहा, अच्छा, निश्चित रूप से नहीं। कहा, ना ही यह देह के लिए दैविक चंगाई का प्रचार करने के द्वारा भाई ब्रैनम को दैविक चंगाई देने वाला बनाता है। वो दिव्य चंगाई करने वाले नहीं है, वह तो बस यीशु मसीह की ओर संकेत करते हैं। और उसने कहा, उन्हें सामने लाओ, मुझे उसे इस काम को करते हुए देखने दो। मुझे लोगों को आज से एक वर्ष के बाद देखने दो और मैं आपको बताऊंगा कि मैं विश्वास करता हूं कि नहीं। भाई बोसवर्थ ने कहा, भाई बेस्ट, ये कलवरी पर हुए एक और मामले की तरह लगता है। तू कलवरी से नीचे उतरा और हम तुझ पर विश्वास करेंगे, समझे? और सो ओह, तब उसे बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने कहा, मुझे उसे काम करते हुए देखने दो, मुझे उसे काम करते हुए देखने दो। संचालकों ने उसे नीचे बैठा दिया। वो वहाँ पर चलकर गया और वहाँ पर एक पेंटिकॉस्टल प्रचारक खड़ा हुआ था। उसने उसे बस मंच पर से जोर से नीचे बैठा दिया और सो उन्होंने तब उसे रोक दिया। तो भाई बोसवर्थ ने कहा, यहाँ देखें, यहाँ देखें, नहीं नहीं। सो संचालकों ने उसे नीचे बैठा दिया। रेमंड रिची खड़े हुए, कहा, क्या यही पश्चिमी बैप्टिस्ट कन्वेंशन का व्यवहार करने का रवैया है? कहा, आप जो कि बैप्टिस्ट प्रचारक हैं, क्या पश्चिमी बैप्टिस्ट कन्वेंशन ने इस व्यक्ति को यहाँ पर भेजा है या वह अपने आप से आया है? उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैंने आपसे पूछा, वह उनको जानते थे, उनमें से हर एक को। उन्होंने कहा, वह अपने आप से आया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बैप्टिस्ट भी दिव्य चंगाई में विश्वास करते हैं। तो फिर उसने कहा, वह अपने आप से आया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ है जो तब घटित हुआ। तब भाई बोसवर्थ ने कहा, मैं जानता हूँ कि भाई ब्रैनम सभा में है। यदि वो आकर और सभा को समाप्त करना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। सो हावर्ड ने कहा, आप शांत बैठे रहें। मैंने कहा, मैं शांत बैठा हुआ हूँ। और ठीक तभी कुछ तो चीज पास आई, गोल गोल घूमने लगी और मैं जानता था कि यह प्रभु का दूत था। कहा, खड़े हो जाओ। लगभग 500 लोगों ने अपने हाथों को इस प्रकार से एक साथ जोड़ लिया, एक गलियारे को बना दिया। मैं मंच पर आ गया। मैंने कहा, मित्रों, मैं दिव्य चंगाई करने वाला नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। मैंने कहा, भाई बेस्ट, उसके साथ नहीं, या भाई बेस्ट, मैंने कहा, मेरे भाई, मैं आपका अनादर नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपने दृढ़ विश्वास पर बने रहने का अधिकार है, वैसे ही मेरा भी है। मैंने कहा, निश्चय ही, आप देखते हैं, आप अपनी बात को साबित नहीं कर सके, जिसे भाई बोसवर्थ के द्वारा पूछा गया था, ना ही आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा कर पाएंगे जो बाइबल को अच्छी प्रकार से जानता हो, जो उन बातों को जानता है। मैंने कहा, और जहाँ तक लोगों को चंगा करने की बात है, मैं उन्हें चंगा नहीं कर सकता हूँ भाई बेस्ट, लेकिन मैं यहाँ पर प्रत्येक रात उपस्थित रहता हूँ। यदि आप प्रभु को आश्चर्य कर्मों को करते हुए देखना चाहते हैं, आप आ जाएं। वो इसे प्रत्येक रात को करता है। और उसने कहा, मैं आपको किसी को चंगा करते हुए देखना चाहता हूँ और मैं उनकी ओर देखूंगा। आप शायद उन्हें अपने सम्मोहन से उन्हें सम्मोहित कर दें, लेकिन कहा, मैं उसको अब से एक वर्ष के बाद देखना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा भाई बेस्ट, आपके पास उन्हें जांचने का अधिकार है। उसने कहा, कोई भी नहीं, लेकिन आप सुन्न दिमाग वाले पवित्र शोर शराबा करने वालों का झुंड ऐसी चीजों पर विश्वास करते हैं। बैप्टिस्ट इस प्रकार की बकवास में विश्वास नहीं करते हैं। भाई बोसवर्थ ने कहा, बस एक क्षण। कहा, आप में से कितने लोग इन दो सप्ताहों की सभाओं में थे जो यहाँ पर हुई है, जो इन अच्छी बैप्टिस्ट कलीसियाओं के साथ अच्छी स्थिति में खड़े हुए हैं, जो यहाँ हॉस्टन में हैं, जो यह साबित कर सकते हैं कि आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा चंगाई मिली जब भाई ब्रैनम यहाँ पर थे और 300 से भी ज्यादा लोग खड़े हो गए? कहा, इस विषय में क्या? उसने कहा, वे बैप्टिस्ट नहीं है। कहा, कोई भी कुछ भी गवाही दे सकता है, फिर भी ये इसे सत्य नहीं बनाता है। कहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि यह सही है और आप उस चीज का विरोध नहीं कर सकते हैं, और लोग कहते हैं कि यह सही है और आप उसे पलट नहीं सकते, तो आप उसके विषय में क्या करेंगे? देखो इस तरह से। मैंने कहा, भाई बेस्ट, मैं केवल वही बता रहा हूँ जो कि सच्चाई है, और यदि मैं सच्चा हूँ, परमेश्वर बाध्य है कि उस सच्चाई का समर्थन करे। मैंने कहा, यदि वो नहीं करता, यदि वो सत्य का समर्थन नहीं करता है, तो वो परमेश्वर नहीं है। और मैंने कहा, मैं लोगों को चंगा नहीं करता हूँ, मैंने एक दान के साथ जन्म लिया था कि मैं चीजों को देख लेता हूँ, इसे होता हुआ देखता हूँ। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि मुझे गलत समझा गया है, लेकिन मैं अपने हृदय के दृढ़ विश्वास को पूरा करने से अधिक और कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और यदि आत्मा आकर और दर्शनों और उन चीजों को दिखाता है, यदि उस बात पर कोई प्रश्न है तो जांच करें और पता लगाएं। मैंने कहा, ऐसा ही है, लेकिन मैंने कहा, लेकिन मेरे खुद के लिए मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और मैंने कहा, यदि मैं सत्य को बताता हूँ, परमेश्वर इस बात के लिए बाध्य है कि इस बात की गवाही दे कि ये सच्चाई है। और लगभग उस समय कुछ तो वहाँ पर हुआ, यहाँ वो आता है, ठीक नीचे आ रहा था, और अमेरिकी फोटोग्राफरों का संगठन जो कि डगलस स्टूडियो हॉस्टन जो टेक्सास में है, वहाँ एक बड़े कैमरे को लगा रखा था, उनको फोटो खींचने के लिए मना किया गया था। फोटो को खींचा, जब वे श्रीमान बेस्ट की तस्वीरें लेने के लिए वहाँ पर थे, और उसने कहा, इससे पहले कि वहाँ पर जाता, उसने कहा, एक मिनट रुकना, मेरी छह चमकदार तस्वीरें यहाँ आने वाली है। उसने कहा, यहाँ अब मेरी तस्वीर खींचो, और उसने अपनी उंगली को उस बूढ़े संत के नाक में डाली, इस तरह से कहा, अब मेरी तस्वीर खींचो, और उन्होंने वैसा किया। फिर उसने अपनी मुट्ठी बांधी और उसे ऊपर करते हुए कहा, अब मेरी तस्वीर खींचो, और उन्होंने इसे ऐसे ही लिया। तब उसने उस मुद्रा से फोटो खिंचवाने के लिए इस प्रकार से किया, उसने कहा, आप इस फोटो को मेरी पत्रिका में देखोगे, इस प्रकार से। भाई बोसवर्थ वहाँ पर खड़े रहे और कुछ भी नहीं कहा, तब उन्होंने बस इसकी तस्वीर ली। उस रात अपने घर जाते हुए वो कैथोलिक लड़का जिसने इसकी तस्वीर ली थी, उसने इस दूसरे लड़के से कहा, उसने कहा, तुम इसके विषय में क्या सोचते हो? उसने कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने उसकी आलोचना की, वो गार्ड जो उस स्त्री के गले से निकल गई, तो मैंने कहा कि उसने स्त्री को सम्मोहित किया था। कहा, मैं इस बात को कहने में गलत हो सकता हूँ। कहा, तुम उस तस्वीर के विषय में क्या सोचते हो? मैं नहीं जानता। उन्होंने उस तस्वीर को एसिड में रखा, यहाँ पर उसकी तस्वीर थी, यदि आप चाहते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं। वे घर चले गए, वो वहाँ पर बैठकर और सिगरेट को पीने लगा, अंदर जाकर और भाई बोसवर्थ की एक तस्वीर निकाली, ये नेगेटिव थी। उसने दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी निकाली, और उनमें से हर एक तस्वीर खाली थी। परमेश्वर अपने संत बूढ़े व्यक्ति की तस्वीर को वहाँ खड़े होने की अनुमति नहीं देगा, उस पाखंडी के साथ, उसकी नाक या हाथ और उसकी मुट्ठी को उसकी नाक के नीचे इस प्रकार से हिलाए, वो इसकी अनुमति नहीं देगा। उन्होंने दूसरी एक तस्वीर को बाहर निकाला, और यहाँ पर ये था, उन्होंने कहा, उस रात उस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा, और उन्होंने इस नेगेटिव को वाशिंगटन डीसी भेजा, इसे कॉपीराइट या प्रतिलिपि अधिकार दिया गया, वापस भेजा गया, और जॉर्ज जे लेसी जो संघीय जांच विभाग के प्रमुख हैं, उंगलियों के निशान और कागजातों के लिए थे और ऐसी चीजों के लिए होते हैं, वे सारे संसार में वहाँ महानतम में से एक हैं, इसे वहाँ लाया गया और कैमरा, लाइट और अन्य सभी चीजों का परीक्षण करने के लिए दो दिन तक रखा गया। और जब हम उस दोपहर को आए, उन्होंने कहा, आदरणीय ब्रिनम, मैं भी आपका एक आलोचक रहा हूँ, उसने कहा, और मैंने कहा था कि यह मनोविज्ञान है, किसी ने कहा कि उन्होंने प्रकाश को और उस प्रकार की चीजों को देखा है, और कहा, आप जानते हैं, पुराना पाखंडी इस बात को कहा करता था, उसका मतलब अविश्वासियों से था, उन तस्वीरों के जो चारों ओर होता है, मसीह के सिर पर वो तेज प्रकाश और उसके संतों के चारों ओर होता है। उसने कहा, यह बस साधारण रूप से मनोविज्ञान है, लेकिन कहा, आदरणीय ब्रिनम, इस कैमरे की मशीनी या यांत्रिकी आँख मनोविज्ञान को नहीं पकड़ेगी, प्रकाश लेंस पर पड़ा या नेगेटिव पर पड़ा, और वहाँ पर ये था। और उसने कहा, मैंने इस चीज को उनके पास जमा करवा दिया। उसने कहा, ओ श्रीमान, क्या आप जानते हैं कि उस चीज का क्या मूल्य है? और मैंने कहा, मेरे लिए नहीं भाई, मेरे लिए नहीं। और सो उसने कहा, निश्चय ही जब तक आप जीवित हैं, ये कभी भी प्रभाव में नहीं आएगा, लेकिन किसी दिन यदि सामाजिक जीवन आगे बढ़ता रहता है और मसीहत बनी रहती है, इसके विषय में कुछ तो घटित होगा। इसलिए मित्रों, आज रात यदि धरती पर यह हमारी अंतिम सभा है, आप और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, मेरी गवाही सत्य है। बहुत सी बातें हैं, इसे लिखने में पुस्तकों के बहुत सारे भाग लग जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जान जाएं। आप में से यहां कितने लोग हैं जो असल में तस्वीर के बिना स्वयं प्रकाश को उस स्थान पर ठहरा हुआ देखा है जहां पर मैं प्रचार करता आ रहा हूं? अपने हाथों को उठाएं। सारे भवन में सभी ओर किसी ने कभी इसे देखा है? देखिए, लगभग 8 या 10 हाथ हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप कहते हैं, क्या वे इसे देख सकते हैं और मैं नहीं देख सकता? जी हाँ श्रीमान, वो तारा जिसका अनुकरण ज्ञानी पुरुष कर रहे थे, हर एक वेधशाला के ऊपर से होकर गुजरा था, उनके अलावा किसी ने उसे नहीं देखा, वे ही केवल वे लोग थे जिन्होंने इसे देखा था। एलिया वहाँ पर खड़ा हुआ था, उन सभी आग से भरे हुए रथों को और अन्य सभी चीजों को देख रहा था, और गेहजी ने चारों ओर देखा, वो उनको कहीं पर भी नहीं देख पाया। परमेश्वर ने कहा, उसकी आंखों को खोल दो ताकि वह देख सके, और फिर उसने उन्हें देखा, समझे। लेकिन वो एक अच्छा लड़का था, वहाँ पर खड़े होकर चारों ओर देख रहा था, लेकिन वो इसे नहीं देख सका। निश्चय ही यह कुछ के लिए दिया जाता है कि वे देखें और कुछ को नहीं, और यह सत्य है। लेकिन अब आप जिन्होंने इसे कभी नहीं देखा है, उसे कभी नहीं देखा है, और आप जिन्होंने इसे अपनी स्वाभाविक आँख से देखा है और तस्वीर में कभी नहीं देखा है, फिर भी वे लोग जो तस्वीर को देखते हैं, उनके पास आप लोगों से भी बड़ा प्रमाण है जिन्होंने उसको अपनी स्वाभाविक आँख से देखा है, क्योंकि आप अपनी स्वाभाविक आँख से गलती कर सकते हैं। हो सकता है कि वह दृष्टि का भ्रम हो, क्या यह सही है? लेकिन यह दृष्टि का भ्रम नहीं है, यह सच्चाई है, जहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान साबित करता है कि यह सच्चाई है। तो प्रभु यीशु ने ऐसा किया था। आप तब इसे क्या सोचते हैं? आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, मैं यह विश्वास करता हूँ कि यह वही आग का खंभा है जिसने इज़राइल के संतानों की अगुवाई मिस्र से लेकर फिलिस्तीन देश तक की थी। मैं विश्वास करता हूँ कि यह वही प्रकाश का दूत है जो बंदी गृह में आया और संत पतरस के पास आया और उसे छू लिया और आगे जाकर और द्वार को खोला और उसे बाहर प्रकाश में रख दिया। और मैं विश्वास करता हूँ कि यह यीशु मसीह है जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आमीन। वो आज वही यीशु है जो वो कल था, वो हमेशा के लिए वही यीशु रहेगा। और जबकि मैं इस विषय में बात कर रहा हूँ, वही प्रकाश जो उस तस्वीर पर है, वो ठीक अभी इस स्थान से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, 2 फुट की दूरी पर खड़ा हुआ है। ये सही है, मैं मेरी आँखों से उसको देख नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। मैं जानता हूँ कि ये ठीक अभी मेरे भीतर आकर ठहर रहा है। ओह, यदि आप केवल उस फर्क को जान पाते, जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ काम करती है और कैसे चीजें भिन्न दिखने लगती हैं, यह किसी के लिए भी एक चुनौती है। मैं किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने वाला नहीं था, मैं एक वचनबद्ध करने जा रहा था, लेकिन दर्शन लोगों के ऊपर रुके हुए हैं। परमेश्वर इस बात को जानता है। मैं किसी प्रार्थना पंक्ति को बुलाने वाला नहीं था, मैं आपको बस वहीं बैठे रहने दूंगा। आप में से कितनों के पास प्रार्थना कार्ड नहीं है? आइए आपके हाथों को देखते हैं। कोई तो जिसके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है, जिसके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है। वहाँ पर अश्वेत महिला बैठी हुई है, मैं आपके हाथ को ऊपर उठा हुआ देख रहा हूँ, क्या यह सही है? आप बस खड़े हो जाएं ताकि मैं आपको बस एक मिनट के लिए व्यक्तिगत रूप से देख सकूं। मैं ये नहीं जानता कि पवित्र आत्मा क्या कहेगा, लेकिन आप मेरी ओर बहुत अधिक ईमानदारी से देख रही हैं। आपके पास कोई प्रार्थना कार्ड नहीं है। यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझ पर यह प्रकट कर दे कि आपकी परेशानी क्या है, मैं अब इसे आरंभ करने के लिए कर रहा हूँ, बस आरंभ करने के लिए। क्या आप मुझ पर विश्वास करती हैं कि मैं, आप जानती हैं कि कुछ नहीं है, कि मेरे विषय में एक भी अच्छी चीज नहीं है? यदि आप एक विवाहित महिला हैं, मैं आपके पति की तुलना में उससे ज्यादा कुछ नहीं हूँ, मैं बस एक मनुष्य ही हूँ। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसने अपनी आत्मा को इन चीजों को प्रमाणित करने के लिए भेजा है। यदि परमेश्वर मुझे ये बताएगा कि आपके साथ में क्या गलत है, और आप जानती हैं कि मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं आपसे कोई संपर्क कर सकूं, क्या आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करेंगी? परमेश्वर आपको आशीष दे। तब आपका बढ़ा हुआ रक्तचाप आपको छोड़कर जा चुका है, यही है वो जो आपको था, क्या यह ठीक है? तब आप बैठ जाएं। आप बस एक बार इसे विश्वास कर लें। मैं किसी को भी चुनौती देता हूं कि वो इसका विश्वास करे। यहाँ पर देखें, मुझे आपको कुछ तो बताने दें। मार्था प्रभु यीशु के पास आ रही थी। उस दान ने कभी भी काम नहीं किया होता जब पिता ने उसे पहले ही दिखा दिया था कि वो क्या करने जा रहा है। इसने कभी भी काम नहीं किया होता, लेकिन उसने कहा, प्रभु मैं, यदि तू यहाँ पर होता, मेरा भाई कभी नहीं मरता। कहा, लेकिन मैं अब जानती हूँ कि अब भी जो कुछ भी तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे वो दे देगा। उसने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, वो जो मुझ में विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वह जीवित रहेगा, और जो कोई भी जीवित है और मुझ में विश्वास करता है, वह कभी नहीं मरने पाएगा। क्या तू इसका विश्वास करती है? सुनना कि उसने क्या कहा। उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं ये विश्वास करती हूँ कि वह हर एक चीज जो कि तूने कही है वो सत्य है। मैं ये विश्वास करती हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है जो इस संसार में आया है। यही उसका नम्रता पूर्वक दृष्टिकोण था। आप अलग ही महसूस करती हैं, क्या आप नहीं करती हैं महिला? जी हाँ, ये सही है। छोटी महिला जो ठीक वहाँ पर बैठी हुई है, वहाँ आपके बगल में आपको जोड़ों का दर्द और स्त्री रोग है, क्या यह सही नहीं है महिला? आप बस एक मिनट के लिए खड़ी हो जाएं। वो छोटी महिला जिसने लाल कपड़े पहने हुए हैं, आप बहुत नजदीक थी, दर्शन आपके पास आया, जोड़ों का दर्द, स्त्री रोग, क्या यह सही है? और यहाँ पर आपके जीवन में कुछ तो है। आप सीधे सच्चे स्वभाव के व्यक्ति प्रतीत होते हो। आपके जीवन में बहुत अधिक चिंता है, बहुत सारी परेशानी है, और वह परेशानी आपके प्रिय जन के लिए है। यह आपका पति है, वो एक शराबी है, वो कलीसिया नहीं जाता है। यदि यह सही है तो अपना हाथ उठाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे महिला। अब घर जाकर और अपनी आशीषों को ग्रहण करें। आप चंगी हो चुकी हैं। यह प्रकाश आपके पास जा रहा है। वो मनुष्य जो उसके ठीक बगल में बैठा हुआ है, आप श्रीमान, क्या आप विश्वास करते हैं अपने संपूर्ण हृदय से? आपने अपनी एक चेतना को खो दिया है। यह आपकी सूंघने की चेतना है, क्या यह सही नहीं है? यदि ऐसा है तो अपने हाथ को हिलाएं, अपने हाथ को अपने मुंह के पास लाएं, इस प्रकार से कहें, प्रभु यीशु, मैं आपका संपूर्ण हृदय से विश्वास करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब जाएं, आपको आपकी चंगाई मिल जाएगी। परमेश्वर में विश्वास रखें। आप सभी इसके विषय में क्या सोचते हैं वहाँ जो पीछे हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? आदर पूर्व बने रहें। वहाँ ठीक पीछे उस कोने में एक महिला बैठी हुई है। मैं उस प्रकाश को उसके ऊपर रुका हुआ देख रहा हूँ। यही केवल वो तरीका है जिससे मैं इसके विषय में बता सकता हूँ कि प्रकाश ऊपर ठहर जाता है। यह प्रकाश ठीक यहाँ पर उस महिला के ऊपर रुका हुआ है। हो सकता है बस एक मिनट में, यदि मैं यह देख पाता हूँ कि ये क्या है, यह आएगा। वो महिला एक हृदय रोग से पीड़ित है। वो ठीक मेरी ओर देख रही है और उसका पति उसके ठीक बगल में बैठा हुआ है, और उसके पति को कोई बीमारी है। वह बस बीमार रहा है, परेशान रहा है, बीमार रहा है, क्या यह सही नहीं है श्रीमान? यदि यह सच है तो अपने हाथों को ऊपर उठाएं। यह सही है। यह आप है महिला जिसने उस छोटे से दुपट्टे को वहाँ पहना हुआ है। श्रीमान, क्या यह सही नहीं है? क्या आप आज एक प्रकार से परेशान नहीं थे? आपको पेट की तकलीफ है। उस व्यक्ति को यह सही है। आप सभी अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं? आप दोनों करते हैं? आप इसे स्वीकार करते हैं? श्रीमान, मैं आपको बताता हूँ, आपको भी, मैं आपको अपने हाथ को ऊपर उठाए देख रहा हूँ। आपको धूम्रपान की आदत है, आप इसे करना छोड़ दें। आप सिगार पीते हैं, आपको यह नहीं करना चाहिए, यह आपको बीमार कर देता है। क्या यह सही नहीं है? यदि यह है तो इस तरह से अपने हाथ को हिलाएं। यही वो बात है जो आपको परेशान कर रही है। यह आपकी नसों के लिए बुरा है। घिनौनी चीज को दूर फेंक दें और इसे अब दोबारा न करें, और आप उसके ऊपर जय पाएंगे और ठीक हो जाएंगे, और आपकी पत्नी का हृदय रोग उसको छोड़कर चला जाएगा। क्या आप इसे विश्वास करते हैं? क्या यह सही नहीं है? मैं आपको यहाँ से देख नहीं सकता हूँ, और आप ये जानते हैं, लेकिन आप सिगार लिए हुए हैं सामने वाली जेब में। यह सही है। उन चीजों को बाहर करें और आप अपना हाथ अपनी पत्नी पर रखें। परमेश्वर को बताएं कि आपने उस प्रकार की चीज को लेना छोड़ दिया है। आप चंगे होकर घर जाएंगे, आप और आपकी पत्नी चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु का नाम धन्य हो। क्या आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं? यह छोटी महिला जो यहाँ पर बैठी हुई मेरी ओर देख रही है, आप जो वहाँ उस आगे वाली सीट पर है, ठीक यहाँ पर बैठी हुई है एक छोटी स्त्री जिसके मेरी ओर देख रही है, ठीक वहाँ पर बैठी हुई है, आप नहीं? क्या आपके पास प्रार्थना कार्ड है महिला, ठीक यहाँ पर? आपके पास कोई प्रार्थना कार्ड नहीं है? क्या आप अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करती हैं? क्या आप विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है? आप जो उसके पास बैठी हुई हैं, आप उस बात के विषय में क्या सोचती हैं? महिला, क्या आपके पास प्रार्थना कार्ड है? आपके पास नहीं है? आप भी ठीक होना चाहती हैं? क्या आप फिर से वैसे ही नहीं खाना चाहेंगी जैसे कि आप खाया करती थी? आपको पेट की तकलीफ है? क्या आप ये विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह आपको अभी चंगा करता है, खड़ी हो जाएं। यदि आप विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह ने आपको चंगा किया है, आपके पेट में अल्सर हुआ था, क्या आपको नहीं हुआ? यह अधीर स्थिति होने के कारण हुआ है। आपकी बहुत समय से अधीर स्थिति रही है, विशेषकर एसिड और वे चीजें, या मेरा मतलब जो एसिड को पैदा करती है और ये आपके दांतों को सनसनी कर देता है जब आप खाने को वापस अपने मुंह में उगलती हैं। यह सच है। जी हाँ श्रीमान, यह पाचक संबंधी अल्सर है। ये आपके पेट के निचले हिस्से में हुआ था। कभी कभी जब आप ब्रेड के साथ मक्खन को खाती हैं, तो उसके बाद जलन होती है। यह सही है, मैं आपके मस्तिष्क को नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा अचूक है। आप अभी चंगी हो चुकी हैं। घर जाएं और स्वस्थ रहें। आप जो पीछे की ओर इस दिशा में हैं, आप में कुछ जिनके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है, हाथों को उठाएं। कोई तो जिनके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है, तो ठीक है, आदर पूर्ण बने रहें, अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें। ऊपर बालकनी के विषय में क्या है? परमेश्वर में विश्वास रखें। मैं इसे स्वयं से नहीं कर सकता हूँ, यह केवल उसका सर्वोच्च अनुग्रह है। क्या आप विश्वास करते हैं? मैं केवल वही कह सकता हूँ जो वो मुझे दिखाता है। जैसा आपका विश्वास, मैं इसे आपके विश्वास को हिलाने के लिए कह रहा हूँ, तब आप देखें कि वह मेरी अगुवाई किस ओर करता है। क्या आपको एहसास है यह आपका भाई नहीं है? आप उसकी उपस्थिति में खड़े हैं। यह मैं नहीं हूँ जो इसे कर रहा हूँ, यह आपका विश्वास है जो इसे संचालित कर रहा है। मैं इसे संचालित नहीं कर सकता, यह तो आपका विश्वास है जो इसे कर रहा है। मेरे पास इसे संचालित करने का कोई तरीका नहीं है। बस एक मिनट। इस कोने में मैं एक अश्वेत व्यक्ति को बैठे हुए देखता हूँ। वह एक प्रकार से बुजुर्ग है जिन्होंने चश्मा पहना हुआ है। श्रीमान, क्या आपके पास एक प्रार्थना कार्ड है? आप अपने पैरों पर एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं। क्या आप मुझे अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर का सेवक होने का विश्वास करते हैं? आप किसी और के विषय में सोच रहे हैं, क्या आप नहीं सोच रहे हैं? यदि यही सच है, अपने हाथ को हिलाएं, इसलिए नहीं कि यह मैं हूँ, आपका भाई हूँ। अब आपके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है, आपका पंक्ति में आने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है। अब यदि आप में से किसी के पास प्रार्थना कार्ड है, आप खड़े मत होना, देखो, क्योंकि आपको पंक्ति में आने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं उस प्रकाश को ठीक उसके ऊपर रुकते हुए देख रहा हूँ। ये अभी तक दर्शन नहीं आया है। भाई, मैं आपको चंगा नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर ही कर सकता है। लेकिन आप, आपके पास विश्वास है, आप विश्वास कर रहे हैं, और वहाँ कुछ तो है, ये इसका कारण है। किसी तरह से यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस व्यक्ति को बता दे कि उसकी परेशानी क्या है, तो क्या आप बाकी सभी अपनी चंगाई को ग्रहण करेंगे? वहाँ एक मनुष्य है जो मुझसे ठीक 10-15 गज की दूरी पर खड़ा हुआ है। मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। वो बस एक व्यक्ति है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है। यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस बात को प्रकट कर देगा कि इस व्यक्ति के साथ में क्या परेशानी है, आप में से हर एक जन को तो यहाँ से बाहर चंगा होकर जाना चाहिए। परमेश्वर इससे अधिक और क्या कर सकता है? क्या ये सही है? श्रीमान, आपके साथ में कुछ भी गलत नहीं है। आप कमजोर हैं। आप रात में थोड़ा सा जाग जाते हैं, प्रोस्टेट और इत्यादि है, लेकिन ये आपकी परेशानी नहीं है। आपकी परेशानी आपके लड़के के विषय में है, और आपका लड़का किसी प्रकार के राज्य की संस्था में है, और उसका दोहरा व्यक्तित्व है। क्या ये सही है? यदि ये सही है, तो अपने हाथ को हिलाएं। यह बिल्कुल सही बात है। आप में से कितने लोग अब यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह, जो कि परमेश्वर का पुत्र है, यहाँ पर खड़ा हुआ है? आइए हम खड़े हो जाएं और उसे स्तुति दें और अपनी चंगाई को ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवन के रचयिता, हर एक अच्छे दान के देने वाले, आप यहाँ पर हैं। आप वही प्रभु यीशु मसीह हैं, कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और शैतान, तू इन लोगों से बहुत अधिक समय से झूठ बोलता आया है। उन लोगों में से बाहर आ, मैं तुझे जीवित परमेश्वर के द्वारा, जिसकी उपस्थिति यहाँ पर आग के खंभे के रूप में है, तुझे आज्ञा देता हूँ, इन लोगों को छोड़ दे और यीशु मसीह के नाम में उन लोगों में से बाहर आ जा। आप में से हर एक अपने हाथों को ऊपर उठाए और परमेश्वर की स्तुति करे और अपनी चंगाई को ग्रहण करे। आप में से हर एक जन